نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. آمين يا رب العالمين. آج سورة البقرة کا اختتام ہے. اتنی پیاری سورہ جو قرآن کریم کا کوہان ہے، یعنی قرآن کریم کی بلندی ہے یہ سورہ. پورے قرآن میں جتنے اب مضامین آنے ہیں ان کا خلاصہ آپ اس سورت میں دیکھ چکے ہیں. اور اس سورت کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80-80 فرشتے نازل ہوتے تھے. سبحان اللہ. تو بہت خوبصورت سورت ہے جس کا آج ہم اختتام کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ اس سورت سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. آج دیکھیں گے ہم اس کی جو آخری آیات ہیں، اور ان آیات کے بارے میں میں نے آپ کو شروع سورت میں بتایا تھا کہ عبداللہ بن مسعود کا فرمان ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی پہلی چار آیتیں اور آیت الکرسی اور دو آیتیں اس کے بعد کی جو آیت الکرسی کے بعد کی ہیں اور تین آیتیں جو آخر کی ہیں، یہ 10 آیتیں رات کے وقت پڑھ لے، اس گھر میں شیطان اس رات میں نہیں جا سکتا، اور اس کو اور اس کے گھر والوں کو اس دن شیطان یا کوئی اور بری چیز ستا نہیں سکتی. یہ آیات مجنون پہ بھی پڑھ جائیں تو اس کا دیوانہ پن دور ہو جاتا ہے. تو بڑی مبارک سورت ہے یہ، اور آج ہم اس کی سب سے خوبصورت جو آخری دو آیات ہیں وہ پڑھنے جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں آیت نمبر 285 اور 286 سورۃ البقرہ. یہ آیات دو ہیں مگر اس قدر فضیلت والی ہیں، اس قدر زبردست آیتیں ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں عرش تلے کے خزانے سے مجھے دی گئی ہیں اور مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. کہاں سے یہ آئی ہیں آیتیں؟ عرش کے نیچے کے خزانے سے. باقی قرآن کہاں سے ہے؟ لوح محفوظ سے اترا تھا نا آسمان دنیا پر، وہاں سے نازل ہوتا رہا، مگر یہ کہاں سے اتری ہیں؟ عرش کے نیچے کے خزانے ہیں کوئی، جو جہاں سے یہ. اور آپ کو پتا ہے عرش سب سے بلند چیز ہے، اس سے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو عرش کے نیچے سے آنے والی چیز، اس کا مطلب کتنی بلندی سے یہ چیز آئی ہے اور کتنی زبردست ہوگی کہ وہاں کے کوئی خزانے ہوں گے، کوئی ٹریجرز ہوں گے، ان میں سے یہ دو آیتیں یہ ٹریجر ہیں، خزانہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیں آپ کی امت کے لیے. سبحان اللہ. اچھا، پھر یہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی؟ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرائی گئی اور آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور آپ کو پتا ہے سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ ساتویں آسمان میں. تو جو چیز بھی آسمان کی طرف چڑھتی ہے بس وہ یہیں تک چڑھتی ہے اور یہاں سے ہی لے لی جاتی ہے، اور جو چیز اوپر سے نازل ہوتی ہے وہ بھی یہاں تک پہنچتی ہے، پھر یہاں سے آگے فرشتے لے لیتے ہیں اور اس کو سونے کی ٹڈیوں نے ڈھانکا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی، یعنی تحفے سمجھنے دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بلایا اور تین تحفے دیے. ایک تحفہ، اب آپ تحفہ سمجھے نہ سمجھے، مگر ایک تحفہ ہے 5 وقت کی نماز، जो अल्लाह ताला ने वहां बुला के दी थी, जमीन पे नहीं उतारी नमाज का हुक्म, वहां पे दिया। नंबर टू सूरह बकरा की ये आखिरी आया थी। नंबर थ्री ये तोहफा दिया अल्लाह ताला ने कि ऐ नबी, आपकी उम्मत में से जो इंसान भी तौहीद के ऊपर दुनिया से रुखसत होगा, फौत होगा, अल्लाह ताला उसको बख्श देगा। ठीक है, तो ये तोहफे थे जो अल्लाह ताला ने अता फरमाए। इसका मतलब है कि ये आयतें अल्लाह ताला ने जमीन पे नहीं बल्कि आसमानों पे बुला के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। ठीक है, और इससे आप इनकी फजीलत समझ सकते हैं कि ये कितनी खूबसूरत आयतें और इनको पढ़ने की कितनी फिर फजीलत होगी। इससे अंदाजा कीजिए कि बुखारी में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इन दोनों आयतों को रात को पढ़ ले उसके लिए ये दोनों ही काफी है। किस चीज से काफी है? अब ये ओपन एंडेड छोड़ दिया गया। तो उलमा कहते हैं कि यानी जब इंसान रात को सोने लगे तो कुछ ना कुछ उसको तिलावत करनी चाहिए, कुछ ना कुछ उसको पढ़ के सोना चाहिए। तो अगर वो सिर्फ ये दो आयतें भी पढ़ लेता तो काफी होगा। दूसरा ये भी है कि ये दो आयतें हर चीज, हर शर से प्रोटेक्शन के लिए काफी हैं, इंसान की हिफाजत के लिए। बस फिर ये दो ही काफी हैं, दो ही पढ़ ली ना तो आप महफूज हो गए। यानी इतनी जबरदस्त है, यानी आप ये सोचें कि इनका पढ़ना कितना मुबारक है। ये इन दो के पढ़ने से ही आपके लिए, कुछ और नहीं भी पढ़ेंगे तो तब भी ये काफी होगा। इसी तरह बाज कहते हैं कि तहज्जुद की नमाज जिससे अगर नहीं पढ़ी जाती तो ये दो आयतें ही पढ़ ले तो उसके लिए काफी हो जाएंगे। ये नहीं कि तहज्जुद नहीं पढ़नी, मगर ये कि अगर नहीं कोई पढ़ सकता तो ये आयतें काफी हैं उसके लिए। तो इसका मतलब है रात को इनका पढ़ना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हमने अपने तालीमुल कुरान के भी सिलेबस में ये दो आयतें रखी हैं, एडवांस वालों के लिए भी रखी हैं। बाकी भी फहमुल कुरान के लोग भी अगर इनको याद कर लें तो कितनी ही बड़ी बरकत वो भी हासिल कर सकते हैं। देखिए, आपको सब चीजों से हिफाजत हो जाएगी। इंसान अपनी हिफाजत के लिए कितने लॉक लगाता है, कितने गार्ड खड़े करता है, कितना कुछ करता है, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात को पढ़ ले ये दोनों ही काफी हैं, तो और क्या। इसी तरह एक और रिवायत भी आती है कि हजरत अली फरमाते हैं कि मैं नहीं जानता कि इस्लाम के जानने वालों में से कोई शख्स आयतल कुर्सी और सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें पढ़े बगैर सो जाए। ये तो वो खजाना है जो तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श तले के खजाने से दिए गए। तो ये मैं मतलब कहते हैं कि ये कोई इंसान अगर इस्लाम को जानता और वो इसको पढ़े बगैर सो जाए तो कितनी बड़ी ये हसरत है। इसी तरह तिर्मिजी में आता है कि अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन के पैदा करने से 2000 साल पहले एक किताब लिखी जिसमें से दो आयतें उतार कर सूरह बकरा खत्म की। जिस घर में ये 3 रातों तक पढ़ी जाएं उस घर के करीब भी शैतान नहीं जा सकता। और ऐसे महसूस होता है कि कोई बाज चीजें एक से ज्यादा दफा भी नाजिल हुई हैं। तो एक और हदीस मुस्लिम में आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा बैठे हुए थे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके साथ थे कि अचानक एक दहशतनाक बहुत बड़े धमाके की आवाज आई। आसमान का वो दरवाजा खुला जो पहले कभी नहीं खुला था, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि आज वो फरिश्ता उतरा है जो इससे पहले आज तक कभी जमीन पे नहीं आया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया आपको मुबारक हो, आपको दो नूर दिए जाते हैं जो आपसे पहले कभी किसी नबी को नहीं दिए गए। एक नूर सूरह फातिहा और दूसरा नूर सूरह बकरा की आखिरी आयतें। इनके एक एक हर्फ पर आपको नूर दिया जाएगा। यानी ये आयतें नूरानी है, ये नूर है, और आपको महसूस भी होगा जब आप ये आयतें पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो आपको इनका नूर महसूस होगा कि कितनी वाकई एक एक हर्फ इनका नूर वाला है। अल्लाह हू अकबर। तो देखते हैं आयात को। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इससे पहले आयत में हम पढ़ चुके हैं, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ही के लिए जो भी आसमानों और जो भी जमीन है। मैंने जैसे आपको बताया, जब इस तरह से वैसे होना चाहिए था, मा फिस समावाति व मा फिल अर्द लिल्लाह, अल्लाह के लिए जो भी आसमानों और जमीन है। लेकिन जब पहले लाया जाए इस तरह से, अल्लाह का नाम पहले आ गया, तो इसका माना ये होता है कि अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह के सिवा किसी और की नहीं है, अल्लाह ही के लिए। और इसी तरह जैसे आपने देखा, वह इलैकल मसीर, इसमें भी एंड में इस आयत के अल्लाह ही की तरफ लौटना है। तो देखें, अल्लाह ताला ने इससे पहले बता दिया, जो भी आसमानों में, जो भी जमीन में, वो अल्लाह ही का, मिल्कियत उसकी है, इख्तियार उसका। अब इंसान की क्या काम है कि वो अल्लाह के ऊपर ईमान रखे, उसको माने। तो सबसे पहले ईमान लाने वाले कौन थे? आमनर रसूल, ईमान लाए रसूल। कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है कि नबी अलैहिस्सलाम ईमान लेकर आए। किस चीज पर? बीमा। देखिए, अब ईमान के बाद मैंने आपको बताया कि बी आ जाए ना, तो इसका मतलब होता है पक्का यकीन, गहराई के साथ दिल की। बीमा साथ उसके जो उन्जिला इलेही में रबी, जो उसके ऊपर नाजिल किया गया उसके रब की तरफ से। क्या नाजिल किया गया नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से? सब जानते हैं कुरान करीम नाजिल किया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, मगर कुरान के अलावा भी कुछ नाजिल किया गया, और वो क्या है? वो हदीस मुबारक, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, जो अहादीस है आपकी, वो भी अल्लाह ही की तरफ से है। हाँ, उसको हम कहते हैं वही खफी, ये है वही जली, और वो वही खफी है, यानी उसका ख्याल, उसकी वो बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दिल में डाली गई वो अल्लाह की तरफ से, अल्फाज नबी अलैहिस्सलाम के, कुरान में ये है, कुरान के अल्फाज भी अल्लाह की तरफ से हैं, उसमें यह के अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन जो दिल में बात डाली है वो अल्लाह ही की तरफ से। तो वो सबसे पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ऊपर ईमान लेकर आए, क्योंकि रसूलों ने आगे लोगों को पहुंचाना होता है। अगर उन्होंने ईमान नहीं रखा तो फिर वो क्या पहुंचाएंगे आगे? तो सबसे पहले बता दिया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ऊपर ईमान लेकर आए, इस कलाम के ऊपर। सोचें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जिब्राईल अलैहि सलाम तशरीफ लाए थे गारे हिरा में, तो सबसे पहले आपने तस्दीक की, आपने माना कि ये अल्लाह की तरफ से कलाम है। और यहां पर वो लोग जो हदीस को नहीं मानते, वो कैसे इस चीज को मानेंगे? क्योंकि आगे आ रहा है वल मोमिनून, और मोमिन भी ईमान लेकर आए। जो ईमान वाला है ना, जिसको मोमिन कहते हैं, वो भी हर उस चीज पर ईमान लेकर आया जो रसूल के ऊपर उतरी। कौन कौन ईमान लाया? रसूल भी ईमान लाए और मोमिन भी ईमान लाए। किस चीज पे ईमान लाए? उस पे जो अल्लाह ताला ने नाजिल की रसूल की तरफ। ठीक है, रसूल हु है ना, मारफा है, और मोमिनून भी मारफा है, तो ये दोनों फाइल हैं, यानी ये दोनों ही ईमान लाए हैं, जो उनके रब की तरफ से रसूल के ऊपर नाजिल हुआ उस पे ईमान लेकर आए। इसमें यहां मोमिनों के लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है कि उनको भी, जैसे रसूल के बारे में कहा गया कि वो ईमान लेकर आए, तो मोमिन भी ईमान लेकर आए। और ईमान क्या चीज होती है? ईमान की डेफिनेशन क्या होती है? पहले तो हमें ये समझना चाहिए ये ईमान होता क्या है, क्योंकि आगे भी ईमान की बात आ रही है। ईमान की डेफिनेशन लिख लें, ईमान जो है वो इकरार जुबान से, नंबर टू तस्दीक कल्ब से, या तस्दीक कल्ब से पहले लिख लें, तस्दीक कल्ब से, जुबान से इकरार, और आजा से अमल का नाम है। ठीक है, इसको कहते हैं ईमान। यानी दिल में भी तस्दीक हो, कौल में भी इंसान के इकरार हो, और अमल में भी वो ईमान झलके, इताअत हो। अगर समझिए एक मुसाफिर है भटका हुआ, उसको कोई रास्ता बता देता है कि भाई ये सीधा रास्ता है, वो कहता है हाँ हाँ ठीक है, बड़ा अच्छा आपने मुझे समझा दिया, लेकिन वो उल्टा चलना शुरू हो जाता है, तो क्या कहेंगे आप? इसने उस बताने वाले की बात पे यकीन किया था या नहीं? नहीं किया था ना, क्योंकि अगर किया होता तो वो फिर उस रास्ते पे चलता, वो मान गया, वहां पे सर हिलाता रहा हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब चलने लगा तो वो उल्टे रास्ते पे चला गया, उसने वो वाला रास्ता फॉलो नहीं किया जो उस गाइड ने बताया था। इससे क्या पता चला? कि उसको यकीन नहीं था, उसको ईमान नहीं था उसकी बात पर। इसी से आप समझे ये ईमान क्या होता है, सिर्फ ये सर हिला देना नहीं होता कि हाँ हम मान गए, हाँ हमने अल्लाह को मान लिया, हाँ हमने कुरान को माना है, हाँ हमने ये माना। उसके बाद अगर मानना है ना, तो मानने की दलील क्या है? कैसे पता चलेगा कि मैंने और आपने माना है? पता ऐसे चलेगा कि जब वो बताने वाले ने जो बताया, हम उस रास्ते पे तो चले। समझ आई बात? अगर हम उस रास्ते पर ही नहीं चलते, तो इसका मतलब हमने उसकी बात को नहीं माना। आप देखिए, सबसे पहली बात यही है कि इस कुरान पे और हदीस पे ईमान लाया जाए, उसके बाद बाकी बातें आती हैं। इसलिए कि यहीं से तो हमें रब का पता चलेगा, उसकी पहचान होगी, हमने क्या करना है और क्या नहीं करना वो पता चलेगा। वो ये सब सारे नुस्खे इसमें हैं। और ये बताइए कि कभी ऐसे होता है कि आपने कोई किताब पढ़ी ना हो, समझी ना हो, और आप कहें हाँ हाँ मैं उसको मानती हूँ, उसमें जो कुछ है वो सच है? आपको कैसे पता? आपने तो वो पढ़ी ही नहीं। वो एक जुबान की बात हो सकती है, लेकिन कल्ब से तस्दीक नहीं हो सकती। और मैंने आपको बताया आमना के बाद जब बी आ जाता है ना, तो यानी कल्ब से, दिल से तस्दीक करना, वेरीफाई करना कि हाँ ये बात ठीक है, मेरा दिल इसके ऊपर जमा हुआ है। ये तभी हो सकता है सिर्फ जब इंसान उस इल्म को लेता है, उसको समझता है, जब इंसान उससे अपने आप को आशना करता है। और जब कोई आशनाई ही नहीं, जब कोई समझ ही नहीं, दुनिया की कौन सी किताब है जो कहीं आपके बुक शेल्फ पे पढ़ी हो, आपका हाँ ये मैंने सारी ही मान ली है, इसमें जितनी बातें, कैसे आपसे कोई बात पूछी जाए इसमें क्या है, कुछ भी नहीं पता, लेकिन मानी भी है मैंने। मानी भी क्यों है? इसलिए कि मेरे माँ बाप ने भी मानी थी, इसलिए उनके माँ बाप ने भी मानी थी, इसलिए कि हमेशा से मैंने बस यही सुना है कि इसमें जो बातें हैं ना वो सब सच है। तो ये ईमान नहीं कहलाता। ईमान वो वाला जो बी दिल का ठुक जाना उसके ऊपर, और ऐसे दिल नहीं ठुका करते, ये सिर्फ जुबानी बातें होती हैं। इसीलिए तो हम जल्दी से लोगों के फलसफों से मुतासिर हो जाते हैं, वो हमें पता ही नहीं हमारी अपनी किताब में है क्या। तो अगर ईमान इसके ऊपर लाते हो ना कि जो बीमा उन्जिला इलेही में रब्बी ही, तो उस ईमान के लाने के लिए जरूरी है कि इल्म हो, उसका पता हो कि ये है क्या, अदरवाइज सिर्फ जुबानी बात है, कल्ब से तस्दीक तो है ही नहीं। मैंने आपको क्या बताया, ईमान सिर्फ जुबानी करार थोड़ी है, कल्ब से तस्दीक भी है और अमल भी है। अमल किस पे करोगे जो आपको पता ही नहीं? कल्ब कैसे तस्दीक करेगा? उसने तो बचपन से जो बातें सुनी बस वही दोहरा रहा है। तो जरूरी है कि ईमान उसके ऊपर लाना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा, वो तभी है जब इंसान को पता हो कि ये क्या है। गौर करें आप जरा, एक मुसलमान में और काफिर में क्या फर्क है? ईमान के माने क्या है? अल्लाह को मान जाना, उसकी फरमा बरदारी करना, यानी जवारे से क्या है, अमल करना, यानी उसकी फरमा बरदारी, उसकी इताअत करना। और काफिर जो है वो अल्लाह ताला का नाफरमान है, मुसलमान और काफिर देखने में तो दोनों इंसान, दोनों अल्लाह के बंदे, मगर एक इंसान दूसरे से अफजल कैसे हो जाता है? वो इस तरह कि वो अपने मालिक को पहचानता है, उसके हुक्म की इताअत करता है, उसकी नाफरमानी से डरता है, और दूसरा इंसान अपने मालिक को नहीं पहचानता, उसकी फरमाबरदारी नहीं करता। समझ आई? तो ये फर्क है, यानी फर्क क्या हुआ? इल्म में, अमल में फर्क हुआ ना दोनों के। पहला वाला जानता है उसका मालिक कौन है, उसके हिकामात क्या है, उसकी मर्जी क्या है, उसकी किताब से उसने समझ लिया। दूसरा जानता ही नहीं। एक है जो अपने मालिक का गुलाम बन के रहता है, जो मालिक की मर्जी होती है उस पे चलता है, जो अपनी मर्जी है उसको छोड़ देता है। दूसरा जो है वो हर वो काम करता है जो उसका जी चाहता है। उसके मालिक का हुक्म उसके खिलाफ है या नहीं है उसको इसकी परवाह नहीं होती। एक है वो काम करता है जो मालिक को अच्छा लगता है, और उस काम को छोड़ देता है जो मालिक को बुरा लगता है। मालिक को बुरा लगे तो वो उसको बुरा ही समझता है, चाहे उस काम में कितना ही फायदा हो। मालिक को अच्छा लगे तो वो उसको अच्छा ही समझता है, चाहे उसको कितना ही नुकसान नजर आ रहा हो उसमें। मालिक का हुक्म हो कि इसको करो तो चाहे उसमें जान का, माल का उसको लग रहा हो कि कोई फायदा नहीं है, नुकसान है, लेकिन वो जरूर उसको करता है। दूसरे काम में उसको फायदा भी नजर आ रहा हो लेकिन मालिक का हुक्म है इसको नहीं करना, तो चाहे दुनिया भर की दौलत मिल रही है वो उसको नहीं करता। ये क्या फर्क है, कुछ सोचा आपने कभी? यही है वो फर्क जिससे एक मोमिन अल्लाह का प्यारा हो जाता है और उसकी रहमत में आ जाता है, और काफिर जो है वो इस अल्लाह की रहमत से निकल जाता है। लेकिन इंसाफ से काम लेके सोचें, जो इंसान अपने आप को मुसलमान कहता है, मोमिन कहता है, मगर वो वैसा ही जाहिल है जैसे काफिर है, वैसा ही नाफरमान है जैसे काफिर है, तो सिर्फ नाम अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, आयशा और फातिमा रख लेने से, या लिबास मुसलमानों वाला पहन लेने से, या खाने पीने के फर्क की वजह से वो काफिर के मुकाबले में कैसे अफजल होगा? किस तरह वो अल्लाह की रहमत का हकदार होगा? इस्लाम जो है ना किसी नस्ल या खानदान या बिरादरी का नाम नहीं है कि भाई मैं उस बिरादरी से हूं तो इसलिए मैं मुसलमान हूं, या ये बाप से बेटे को, बेटे से पोते को मिल रहा है क्योंकि चूंकि हमारे सारे जो पीछे थे ना मुसलमान थे इसलिए हम भी मुसलमान। ये नहीं होता इस्लाम, ये ईमान नहीं होता। देखिए अब हो सकता है हमारे यहाँ जो जो भी बिरादरी, किसी भी बिरादरी को कोई बच्चा है तो वो चाहे जाहिल है, चाहे वो अच्छा है, चाहे वो बुरा है, मसलन ब्राह्मण होते हैं हिंदुओं में, उसका बेटा जो है वो कितना ही बुरा काम करे वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, वो ऊंची जात का ही समझा जाता है रहेगा। इसी तरह जो जो उनमें नीची जात के लोग हैं वो चाहे कितना ही बड़ा काम कर ले उसको नीचा ही समझा जाता रहेगा। ऐसा ही है ना, इस्लाम ऐसे नहीं है कि हाँ जो जिसके घर पैदा हो गया बस वो वैसा ही है, मुसलमान के घर पैदा हो तो मुसलमान ही है। नहीं, ईमान तो एक शऊर का नाम है, एक डिस्कवरी है, इंसान डिस्कवर करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बुत परस के घर पैदा हुए थे मगर उन्होंने अल्लाह को पहचान लिया, उसकी फरमाबरदारी की, तो अल्लाह ने उनको पूरी दुनिया का इमाम बना दिया। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा देखें, एक पैगंबर के घर पैदा हुए, वो उस पैगंबर के घर पैदा होने से को वो मोमिन और पक्का वो और नेक नहीं बन गया। उसने अगर अल्लाह को नहीं पहचाना तो वो अल्लाह तआला ने उसके खानदान की कोई परवाह नहीं की, वो काफिर ही शुमार हुआ। तो आप कहीं अगर पैदा हो गए हैं मुसलमानों के घर में तो उससे आप कोई पक्के मोमिन नहीं बन गए। उससे आप ये ना समझें कि मैं तो, मेरा नाम भी ये है मुसलमानों वाला, हम मुसलमान मुसलमान ही है, जद्दी पुश्ती मुसलमान है तो मैं भी मुसलमान ही हूं। नहीं, ऐसा नहीं होता। दुनिया और आखरत में अल्लाह की रहमत सिर्फ उनको मिलती है जो अल्लाह को पहचान लेते हैं, उसके सीधे रास्ते को जान लेते हैं और उस पर चल पड़ते हैं। और जिसमें ये नहीं है वो चाहे अपना नाम अब्दुर्रहमान रख दे, चाहे अपना नाम दयाल सिंह रख ले, चाहे अपना नाम कुछ रख ले, कुछ इससे फर्क नहीं पड़ता। उसकी दोनों को ही नहीं पता कि खुदा कौन। हमारा नाम चाहे सरकारी कागजात में मुसलमान लिखा हो, अगर हमें पता ही नहीं है ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, अल्लाह कौन है, उसकी मर्जी क्या है, हमारा दिल इसकी तस्दीक ही नहीं करता, बस चल रहे हैं, जिंदगी गुजर रही है ना भाई, कुछ ना कुछ तो दीन होना ही चाहिए था, तो चलो इस्लाम ही हो गया। ओ खुदा के बंदो, ये नहीं होता ईमान, ये नहीं होता इस्लाम, ये बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। एक वो बंदा जो जानता है और वो जो नहीं जानता। किसी शख्स का अगर पहचान ही नहीं अल्लाह की और अमल ही नहीं वैसा जैसा अल्लाह ने चाहा, और वो काफरों जैसी जिंदगी गुजार रहा है, तो चाहे वो अपने आप को मुसलमान कहता है, वो मुसलमान नहीं है। काफिर तो कुरान को नहीं पढ़ता, वो नहीं जानता इसमें क्या लिखा है। अगर मुसलमान का भी वही हाल है तो वो मुसलमान कैसे कहला सकता है? काफिर को तो नहीं पता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम क्या है, अल्लाह तक पहुंचने का सही सीधा रास्ता क्या है। अगर मुसलमान भी इसी तरह नावाकिफ है तो वो मुसलमान किस काम का है? अगर काफिर भी अल्लाह की मर्जी पे चलने की बजाय अपनी मर्जी पे चलता है, मुसलमान भी इसी तरह करता है, तो वो उस काफिर से बेहतर कैसे हो गया? अगर उसने भी अपनी राय पे चलना है, अपनी मर्जियों पे चलना है, उसने भी अल्लाह के अहकामात की कोई परवाह नहीं करनी, उसने भी अगर अपनी ख्वाहिश का बंदा ही बनना है, तो फिर क्या उसको मुसलमान कहलाने देने का हक है? काफिर भी हलाल हराम की तमीज नहीं करता, जो भी उसको काम अपने नजदीक लगता है कि हाँ इसमें मजा है या इसमें मेरा फायदा है, वो उसको ले लेता है, चाहे वो हराम है चाहे वो हलाल है, वो इट डजंट केयर। यही काम अगर मुसलमान भी कर रहा है तो क्या फर्क है दोनों में? जब मुसलमान भी कुरान के इल्म से उतना ही कोरा है जितना काफिर है, जब मुसलमान भी वही सब कुछ कर रहा है जो काफिर कर रहा है, जब मुसलमान भी कहलाने वाला अल्लाह को नहीं जानता जैसे काफिर नहीं जानता, तो क्या फजीलत है उसको काफिर के मुकाबले में? ये बताएं, सिर्फ ये कि आप मुसलमान के घर में पैदा हो गए, इसके ऊपर बख्शिश हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने अपना नाम बहुत बड़ा एहसान कर लिया कि हमने अपना नाम मुसलमानों वाला रख लिया। बस ये ईमान होता है कि मेरा नाम मुसलमानों वाला है, ये है हमारा ईमान, ये बताएंगे हम? ना हमारी जिंदगी में कोई फर्क, ना हमारे उठने बैठने में, ना हमारे बोलने चालने में, ना हमारी कमाइयों के तरीके में, तो क्या है हम फिर? ये सोचने की जरूरत है। कहते हैं ईमान रखते हैं हम, बहुत बड़ी बात है ये, बीमा उन्जिला इलैहि मिन रब्बी, इस कुरान पे ईमान, हदीस पे ईमान, किसी को पता भी है हदीस में है, पता भी है इस कुरान में है क्या? फिर हम पूछते हैं, कुरान पाक सीखना क्या फर्ज है? इसको समझना क्या फर्ज है? खुद बताओ, जिस चीज पे आप कहते हो हम ईमान रखते हैं उसको जानना ही नहीं और कहते हैं ये फर्ज है? अल्लाह अकबर। फिर फरमाया, कुल्लुन आमना बिल्ला, सब के सब ईमान लाए अल्लाह पर। कौन सब के सब? रसूल भी और सारे मोमिन, यानी अल्लाह ताला ने मोमिनों को भी इतनी, यानी इतना बड़ा ऑनर दिया कि उनको भी रसूल के साथ मिला के फरमाया कि जैसे रसूल ईमान लाए अल्लाह पर, इसी तरह मोमिन भी ईमान लाए अल्लाह पर। और ये भी कौन सा ईमान है? ये भी कोई तकलीदी ईमान नहीं है, ये नहीं है कि मेरे माँ बाप ने कहा था कि अल्लाह एक है और अल्लाह हमारा खुदा है तो चलो मैं भी कह देती हूँ। नहीं, ईमान अल्लाह पर क्या है जब अल्लाह ताला को उसकी तमाम सिफात के साथ माना जाए, उसकी तमाम बातों पे यकीन हो, यकीन दिल की गहराइयों से, उसके तमाम फैसलों पर दिल राजी हो, ये है ईमान। समझ आ रही है? ये ईमान, ये बेसिक चीजें हैं जो नर्सरी के बच्चे वाली चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारे हमें पता होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं पता। हमारे माँ बाप ने कह दिया चलो ठीक है अल्लाह एक है, चलो अल्लाह एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा सिखा दिया बचपन में, वो वैसे ही रट लिया, वो ही बिल्कुल जैसे वो तोता है ना, तोते को रटा देते हैं, बिल्कुल उसी तरह। हम भी आज अपने बच्चों को रटा देते, वो ही जैसे हमने ये कलमा पढ़ा था ना जब हम 5 साल के थे, उसी शऊर के साथ आज भी हम ये कलमा पढ़ रहे हैं। हमें कुछ नहीं पता, ये कलमा इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है, ये कोई मामूली बात थोड़ी है। हमने इलाह मान लिया किसी को, अपना खुदा मान लिया किसी को, हमने कहा उसके सिवा कोई इबादत के लायक ही नहीं है, ये मान लिया हमने। हमने ये मान लिया कि जितने और खुदा जिनको दुनिया में माना जाता है, उनको कहा जाता है ये खुदा है, वो सब झूठे हैं, ला इलाहा कोई है ही नहीं और इलाह। फिर ये कहां से आ जाती है बात, नहीं इस किसी को ना कुछ कहो, सब ठीक है। आखिर बेचारे सारे अल्लाह की तलाश में है ना, सब ठीक है। वो सब ठीक है तो तुम्हारा कलमा क्या कहता है? तुम कलमे में सबसे पहले कहते हो ला इलाहा, सब कैसे ठीक हो गए? जब तुमने कहा ला इलाहा तो असल में उसकी समझ ही नहीं थी ना, तुमने कहा क्या? तुमने कहा सब झूठे हैं, झूठे, ये सब झूठ है, सब गलत है, सब बातिल है, सिर्फ एक मेरा अल्लाह है जो इबादत के लायक है, सिर्फ मेरा एक अल्लाह है जिसके आगे माथा टेका जाना चाहिए, सिर्फ मेरा एक अल्लाह है जिसके आगे हाथ उठा के दुआ करनी चाहिए, सिर्फ मेरा एक अल्लाह है जो मुश्किल कुशा है, सिर्फ मेरा एक अल्लाह है जो हाजत रवा है, सिर्फ मेरा एक अल्लाह है जो शिफा देता है, सिर्फ मेरा एक अल्लाह है जो औलाद देता है, सिर्फ मेरा एक अल्लाह है जो इज्जतें देता है, सिर्फ मेरा एक अल्लाह है जो रिस्क देता है, सिर्फ मेरा एक अल्लाह है जिसके हाथ में मेरी सांस है, मेरी जान है। ये, और यही नहीं, चलते जाएं जिस सारे दिन और रात गुजर जाएंगे, हम इस चीज को बयान में जितना भी करती जाऊं ये बातें खत्म नहीं हो सकती कि सिर्फ मेरा एक अल्लाह है जो हई है, मेरा एक अल्लाह है जो कयूम है, मेरा एक अल्लाह है जो मालिक यौमिद्दीन है, जो सब हमने आयतल कुर्सी में बातें पढ़ी थी, वो मेरा एक अल्लाह ही है जो ये सब करने वाला है। इसके बाद बताएं कि कौन हो सकता है जो जाके किसी इंसान के आगे झुक जाए, जो जाके किसी से कहे कि गौसे आजम आपके वास्ते से हमें रिस्क मिलता है, और फलां दाता साहब आपकी वसीले से हमें औलाद मिलती है, आप कहते हैं तो होता है सब काम, आप कहेंगे तो हमारी बख्शिश हो जाएगी। नहीं जी, हमें तो जो कुछ मिला है इनके फैज से मिला है, ये क्या है फिर, ये क्या है फिर? आज देखें जाके कि कहां कहां की अकीदे में, इस ईमान में कहां कहां शिर्क की आमेजिश आ चुकी है। ये ला इलाहा को तो हम छोड़ चुके हैं। हाँ अल्लाह है मगर ये भी है, ये कहते हैं ला इलाहा नहीं रहा। जिस वक्त यानी जब मुझे कोई भेजता है ना ये व्हाट्सएप पे ऐसी वीडियोस, तो मैं हैरान हो जाती हूँ, मैं सोचती हूँ या अल्लाह ये लोग एग्जिस्ट करते हैं क्या? नहीं, मैंने इन आंखों से देखा है वो वीडियोस के, एक आदमी खड़ा हुआ उसके आगे सजदे कर रहे हैं, और उसके बाद उसको पता नहीं क्या हाल चढ़ जाता है, वो गोल गोल घूमने शुरू हो जाता है। एक आदमी मिंबर पे बैठा हुआ ये बयान कर रहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी उनकी आग से जो ठंडी हुई थी वो निकालने वाले कौन थे? हजरत अली। या रब, कौन सी दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं कि हम अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और उसके बाद हम ये करते हैं? वो खुद मैंने देखी है तस्वीरें जिसमें कब्रों के आगे सजदे कर रहे हैं और कब्रों के आगे हाथ उठा के खड़े हुए हैं और उनकी तरफ मुंह करके दुआएं कर रहे हैं। हमने तो कहा था कि ला इलाहा सबकी नफी कर दी थी, हमारा तो कलमा ही शुरू इससे होता है, तुम किधर भटके फिर रहे हो? जब ये हमने कह दिया ला इलाहा, तो फिर तो इबादत के लायक कोई है ही नहीं, और इबादत के अंदर आता है सजदा, इबादत के अंदर आता है दुआ करना, इबादत के अंदर आता है जिसे मन्नतें मानी जाए, इबादत के अंदर आता है जिसके नाम की नमाज पढ़ी जाए। आज अब्दुल कादिर जिलानी के नाम की भी नमाज पढ़ी जाती, उनके रोजे की तरफ की भी मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है। मुनाकबे कादरिया किताब है, उसके अंदर देख लें आपके क्या क्या लिखा, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या किस कदर हमारा जो ईमान का दावा है कितना बोगस है। लोग जब हम कहते हैं ना आमना बिल्ला, इसका मतलब हमने माना कि खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, तदबीर करने वाला अल्लाह, ये सब कुछ कंट्रोल अल्लाह कर रहा है, सब कुछ उसके हाथ में, सस्टेनर अल्लाह है, कायम रखने वाला सब चीजों को अल्लाह है। लेकिन जब किसी और के आगे झुका जाए, किसी और से मांगा जाए, किसी और को मुश्किल कुशा समझा जाए, जब वो कहते हैं हमारे 24 घंटे में हम आपका काम करके देंगे, आप हमसे राबता कीजिए, जब उनसे राबता करने जाते हैं, किस किस अकीदे से करने जाते हैं कि 24 घंटे में यहां से मेरा काम हो जाएगा, वो क्या इतनी ताकत रखता है कि वो आपका काम कर सके? वो मुश्किल कुशा है, महबूब कदमों में होगा, रोजगार के मसले हल हो जाएंगे, औलाद नहीं हो रही वो हो जाएगी। किधर भटक रहे हो तुम? और अपने आप को कहते हैं हम मुसलमान हैं, वो कहते नहीं हमारी मुश्किलें इतनी हैं, बड़े दिनों से दुआएं कर रहे थे नहीं पूरी, अब हमने कहा कि हम इन बाबा के पास चले जाते हैं। कितने आज बाबों का कारोबार किससे चल रहा है? हिंदुओं से नहीं चल रहा, क्रिश्चियन से नहीं चल रहा, यहूदियों, हमारे मुसलमानों से चल रहा। अपने मुल्कों में देखो जाके, हर जगह आपको वॉल चौकिंग मिलेगी, फलाना बाबा, फलां बाबा, फलां बाबा। इस कारोबार को, इस धंधे को ये चल इसलिए रहा है कि हमारा ईमान अल्लाह पर नहीं है, इसलिए ये चल रहे हैं, वो इसलिए पनप रहे हैं। आप देखें उनके मुरीद कितने हैं, आप देखें उनके ऊपर जाने छिड़कने वाले कितने, और अंधा इतमाद करने वाले। ईमान कब का जा चुका है, वो अपने आप को चाहे अब अली कहे, चाहे उमर अपना नाम रखे, चाहे अपना नाम मोहम्मद रख ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले ए मुसलमानों सीखो ईमान बिल्ला क्या होता है, पहले तो ये सीखो ना, और तो बाद की बातें हैं, छोड़ दो सब। सबसे पहले ये सीखो, क्योंकि अल्लाह ताला हर गुनाह को बख्श सकता है, लेकिन अल्लाह शिर्क को नहीं बख्शेगा कभी, इसकी माफी नहीं है कभी। और शिर्क आता किस में है? ईमान बिल्ला, ईमान अल्लाह पर जो होता है ना, ईमान बिल्लाह में जब खोट आ जाता है तो वो है शिर्क। और कहां कहां हम शिर्क कर रहे होते हैं, हम पता ही नहीं होता, कहां कहां हम औरों को समझ रहे होते हैं कि ये हैं जो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, अंधा अकीदा बन चुका होता है। ये नहीं सिर्फ कि अब मुंह से तो हम देखें ला इलाहा ही पढ़ते हैं, जितना मर्जी मुंह से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, उस ला इलाहा इल्लल्लाह की कोई वैल्यू नहीं है जिस ला इलाहा इल्लल्लाह में शिर्क है, जिसमें किसी और को सजदे हो रहे हैं, किसी और से मांगा जा रहा है। किसने देना है हमें? हमें क्या पता है कि सारे खजाने किसके पास है? मानते हैं कि अल्लाह के पास है तो उससे क्यों नहीं मांगते? नहीं वो हमारी तो सुनी नहीं जाती, तो आपको क्या पता कि किसी और की सुनी जाएगी? वो कहे अल्लाह से जबरदस्ती करा लेगा, आपकी तो अल्लाह नहीं सुन रहा, तो आपके बारे में जब कोई और कहेगा तो अल्लाह उनकी सुन लेगा, जबकि अल्लाह ने नहीं देना, लेकिन अल्लाह कहेगा क्योंकि ये मुझे बड़ा फोर्स कर रहे हैं, नऊज़ बिल्ला, तो मैं इनकी सुन लेता। क्यों अपने ईमानों को हम खराब करते हैं? और सबसे ज्यादा शैतान उस वक्त आता है जिस वक्त इंसान किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है, किसी तकलीफ में होता है, तो शैतान आके ऐसे उसके अकीदे को खराब करता है कि यहां से मिलेगा तुम्हें, यहां से तुम्हारी हाजत रवाई होगी, इसके पास चले जाओ, यहां से जरा उम्मीद लगती है। नहीं सुना बहुत है कि वहां पे लोगों की मुरादें पूरी हो जाती हैं, वो क्या हो गया, एक जगह देखा या अल्लाह हमें माफ कर दे, एक जगह उन्होंने कहा कि ये सिगरेट वाले बाबा है, वो क्रिश्चियन आदमी फौत हुआ हुआ, उसकी उसकी खबर है, वो सिगरेट पीता था, शराब पीता था, वहां पे वो कह रहे हैं हम मुसलमान भी और हिंदू भी, सब हम सबकी मन्नतें यहाँ पे पूरी होती हैं, तो हम सब आके यहाँ पे अपनी मुरादें मांगते हैं। वो मुझे बताओ उस मुसलमान में और उस हिंदू में क्या फर्क है? वो ये कौन ठीक करेगा, कौन इसके लिए काम करेगा, कौन बताएगा लोगों को, कौन जगाएगा उनको? कितने मिजारों के धंधे चल रहे हैं हमारे यहाँ, और खा कौन रहे हैं? वो बेचारे जो दुनिया से चले गए वे, वो तो अपने नेकियां करके चले गए, अब ये जो ऊपर बैठे हुए हैं ये खा रहे हैं, उनको तो मुफ्त में कारोबार चल रहा है, और इससे ज्यादा अच्छा बिजनेस क्या हो सकता है? लेकिन हमें समझ नहीं आती, कितने सहाबा हैं जिनके मिजार हैं ऐसे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीज़ानों पे ऐसे जाके लोगों पैसे डालते हैं और चादरें चढ़ाते हैं, और हम ये काम कर रहे हैं। और जितना इन चीजों को देखते हैं उतना ही इतना दुख होता है कि अल्लाह ये क्या हो रहा है। ऐसे ऐसे वीडियोस आती हैं, अब तो वीडियोस में सब दूर दराज की जगहों के पता चल जाता है, ऐसी ऐसी कलिमात बोलते हैं कि खुदा की कसम इससे ज्यादा ब्लेटेंट शिर्क कोई नहीं हो सकता, जैसी वो कलिमात उनके लिए कह रहे होते हैं। अल्लाह हू अकबर। और येट हम सब मुसलमान और हमारे ईमान को कोई फर्क नहीं पड़ता, ईमान वैसा ही रह जाता है। ईमान जो है ना वो एक शऊरी सफर का नाम है कि इंसान उस खुदा को मानता है जिसको वो देख नहीं सकता, गैब पर ईमान। और ये बहुत बड़ी डिस्कवरी होती है, इसीलिए आप देखते हैं ना जो लोग रिवर्टेड होते हैं, सोच समझ के इस दीन की तरफ आते हैं, फिर वो कैसे इसके ऊपर पक्के होते हैं। ईमान है छोटी चीज नहीं, इनकलाब है। जैसे जमीन में जलजला आ जाए और वो उलट पुलट हो जाए, इस तरह इंसान के अंदर जलजला आ जाता है। इंसान की सोच को ईमान बदल देता है, उसके मिजाज को बदल देता है, उसकी एक्टिविटीज का रुख फिर जाता है, उसकी प्रायोरिटीज ही चेंज हो जाती है, वो एक नया इंसान बन जाता है, नया इंसान बन जाता है। आप देखिए, मिसाल देखें मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, मिस्र के जो जादूगर थे कैसे वो आए मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने के लिए, और उन्होंने जब देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम के असा ने इनकी सारी रस्सियों को निगल लिया है, उन्होंने कहा आमन्ना भी रब्बिल आलमीन, हम ईमान लाए रब्बिल आलमीन पे, वो बोल उठे, वो सज्दे में गिर पड़े। फिरौन हैरान हो गया, इनको हो क्या गया। उसने कहा मैं तुम्हारे हाथ पैर उल्टे सीधे समत में कटवा दूंगा, तुम सारों को सूली पे चढ़ा दूंगा। उन्होंने कहा अब तू जो मर्जी हमारा कर ले, जो तू कर सकता है ना कर ले, ये दुनिया की जिंदगी का ये पास। चंद लम्हों में उनको हो क्या गया था, क्या हुआ था उनको, ईमान उनके अंदर आ गया था। ईमान ऐसे इंसान को बदल देता है कि फिर इंसान किसी और से नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह से डरता है। ईमान पहचान है अल्लाह की। पहचान हुई आपको अल्लाह की, पहचान है वाकई, क्या पहचान है। जब सातवें पारे में शुरू में आता है ना कि नजरान के इलाके से 10 ईसाइयों का एक वफद आया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए, मदीना आया, तो आपने उनको कुरान का कुछ हिस्सा सुनाया, वो सुन के उनका हाल क्या हुआ था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनका हाल ये था कि वो बेख्तियार हो पड़े, आंखों से आंसू जारी हो गए। ये होता है ईमान, जब आता है ना तो इंसान अल्लाह को पहचानने लगता है। असल में ईमान क्या, अल्लाह को पहचान लिया कि अल्लाह कौन है। इसीलिए फिर खौफ भी आता है कि वो जात उसके आगे मुझे खड़े होना है। वो फिर जब ईमान आता है ना, फिर इंसान इस दुनिया में अपने आप को ऐसे महसूस करता है जैसे कि वो आखरत में अल्लाह के साथ सामने खड़ा हुआ। लोग तो कयामत के दिन अल्लाह को देखेंगे तो उनका बुरा हाल हो जाएगा, वो क्या मतलब ऐसे हो जाएंगे कि अल्लाह की जात, और वो उस वक्त उनके ऊपर वो हैबत और वो अल्लाह ताला की अजमत, वो उस दिन उनको पहचान होगी। लेकिन मोमिन को बगैर देखे इस दुनिया में ऐसी पहचान होती है। वो जो काफिर है ना वो कयामत में अल्लाह को देख के ढह जाएगा, मोमिन इस दुनिया में अल्लाह के सामने ढह जाता है। जो काफिर के ऊपर कयामत में गुजरना है ना देखने के बाद वहां पे हकीकत, मोमिन के लिए इस दुनिया में वो गुजर जाता है। इसका नाम होता है ईमान। इसीलिए फिर जब वो जानने लगता है ना अल्लाह को, तो उसका हाल ये होता है कि फिर उसकी भी आवाज पस्त हो जाती है, जैसे कयामत के दिन लोगों की आवाजें पस्त हो जाएंगी। ये जो बोलता नहीं है ये क्या, वो तो नहीं मैं मानता, मैं ऐसे नहीं करता, नहीं, उसकी जिंदगी पाबंद जिंदगी हो जाती है, वो आजाद जिंदगी नहीं गुजारता फिर। तो देखिए बड़ा फर्क है, ईमान को तो समझे, ईमान है क्या। हमें इसके ऊपर बोलती रहूं सारी क्लास गुजर जाएगी, लेकिन हमें आगे चलना है। अल्लाह अकबर। तो ईमान बिन देखे खुदा पर ईमान, जब देख लेंगे तब तो सबने ईमान ले आना, फिर आपका क्या कमाल हुआ और मेरा क्या कमाल हुआ। असल बात यह है कि हम यहाँ इस दुनिया में रह के ये समझ जाएं कि अल्लाह कौन है, वो मेरा पैदा करने वाला कौन है, वो मेरा मालिक कौन है, वो मेरा खालिक कौन है, वो कौन है जिसके हाथों में मेरी जिंदगी की डोर है, तब पता चले कि हाँ ईमान आया। और ये क्या ईमान है कि बस ईमान ईमान के दावे और उसके बाद कुछ नहीं। तो ईमान मान लेना है, ईमान पहचान है अल्लाह ताला की, पहचान हो गई है। अगर पहचान हो गई ना, फिर उसकी इताअत बड़ी आसान है, फिर पता चल जाता है कि उसकी गुलामी की जाए, इसके सिवा किसी की गुलामी नहीं। फिर सिर्फ उस पर भरोसा करेंगे जब उसको पहचान लेंगे कि वो कौन है, वो तो वो है जो अला कुल्ली शय इन कदीर है। फिर ये होता है अल्लाह अल्लाह ताला ना, जितना मैं आपको मेरी छोटी सी समझ के उसमें जितना मैं आज तक समझी, इसका खुलासा आपको बताऊं, अल्लाह ताला वो जात है जो बियॉन्ड 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 आवर इमेजिनेशन बहुत बड़ा है। कि यानी आप उसकी सिफात में जाए ना, आपकी अक्ल दंग रह जाती है। किसी में आप देखेंगे कोई एक सिफत होगी छोटी सी, मसलन रहम की सिफत है, और वो भी एक जर्रा होगा, आप उससे ही बड़े मुतासिर हो जाते हैं। किसी में एक सिफत होगी किसी के साथ भला करने की, किसी को कुछ देने की, सखावत की मसलन, छोटी सी एक कतरा, आप उससे ही बहुत उसकी गुण गाते हैं। तो इस तीसरे बंदे के अंदर देखेंगे कोई और ऐसी सिफत होगी, वो बड़ा बड़ा जहीन होगा, बड़ा उसके पास नॉलेज होगा। अल्लाह ताला के अंदर तमाम सिफात कमाल की, पूरी यानी लामहदूद है उसकी सिफात। वो अल्लाह ताला के अंदर कमाल सिफात सारी की सारी वो एक जात के अंदर है, और उनके कमाल को हम समझ ही नहीं सकते, हम उनके एक्सटेंट को नहीं समझ सकते। वो बहुत अजीम जात है, बहुत अजीम जात। हमने तो हम जब अल्लाह ताला के बारे में बात करते हैं ना, ऐसे कर रहे थे जैसे पता नहीं कि ये साथ वाले किसी के बारे में हो, जैसे पता नहीं किसी दोस्त अहबाब या इनके बारे में बात कर रहे हैं। वो पता ही नहीं है ना, अगर पता होता इंसान अगर जान सके तो फिर क्या ही बात है। इसीलिए तो वो कहते हैं मारफत जरा बराबर भी आ जाए ना, जरा बराबर भी, मार्फत समझते हैं अल्लाह की पहचान, जर्रे के बराबर भी आ जाए तो इंसान उससे ज्यादा किसी और से मोहब्बत ना करे, और इंसान उससे ज्यादा किसी और से ना डरे, और इंसान उससे ज्यादा किसी और पे ना भरोसा करे, और इंसान दीवाना हो जाए उसकी मोहब्बत, जर्रा बराबर भी उसकी मोहब्बत आ जाए, उसकी पहचान आ जाए। तो पहचान नहीं है असल में, प्रॉब्लम यहाँ है। ईमान किस पे लाएंगे जिसकी पहचान ही नहीं। अल्लाह अकबर, जब पहचान आती ना, फिर इंसान कहता है सारी कायनात पे लिल्लाह ही माफी समावाती व माफी, जैसे सारी कायनात पे उसकी हकूमत है, इसी तरह मेरी जात पे, मेरी अकल पे, मेरे जिस्म पे उसकी हकूमत है। मेरा सर झुकेगा तो सिर्फ उसके सामने, मैं क्यों डरूं उससे और उससे और उससे, मैं तो सिर्फ उस एक रब से डरती हूँ। और ये कितनी बड़ी हमारी तरफ से, यानी समझ ले उसकी शान में एक गुस्ताखी है ना, जब हम वो रब्बुल आलमीन उससे नहीं डरते, वो ये छोटे छोटे तिनकों से डरते हैं, तिनके जैसे इंसानों से। ये कितनी बड़ी गुस्ताखी करते हैं हम, गुस्ताखी नहीं है क्या? फिर ये मानना कि इस कायनात को चलाने में कोई उसका शरीक नहीं, लोगों को रिस्क देने में कोई उसका शरीक नहीं, जितनी नेमतें मेरे पास है सिर्फ उसकी तरफ से, मैं देख रही हूं तो इसलिए कि वो मुझे दिखाता है, मैं सुन रही हूं इसलिए कि उसने मुझे सुनवाया, मेरी जिंदगी चल रही है तो इसलिए कि वो मेरी जिंदगी चला रहा है। तो ऐसी जात है वो, और उस एक जात पर जब ईमान आ जाता है ना, तो फिर इंसान हर एक से आजाद हो जाता है, हर एक पाबंदी से, इसलिए कि उसकी जिंदगी एक की पाबंद होती है, फिर एक के हुक्म की, फिर हर एक के हुक्म को नहीं वो देखता फिरता उसने क्या कहा उसने क्या कहा। फिर इंसान क्या है कहता है ये, फिर कि क्या डर है जो सारी खुदाई भी हो मुखालिफ, काफी है अगर एक खुदा मेरे लिए, बस वो एक मेरे लिए ना, मेरे लिए काफी। मुझे क्या ये सारे मेरे मुखालिफ हो जाए, हमारी तरह नहीं, उससे डर रहे, आए वो क्या कहेगा, ओ वो उसको ना नाराज कर लो, ओहो उसका मुंह ना मेरे से फिर जाए। ये इंसान फिर अपने आप को जलील करता है, फिर इंसान अपने आप को गिरा देता है। तुम ये खुदा के मानने वाले हो, तुम्हारा तो कभी किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए ये सर। तो ये ईमान बिल्ला है। अब कभी कोई वक्त हुआ तो इंशाल्लाह इस टॉपिक पे और बात करेंगे। फिर वह मलाइकातुही और उसके फरिश्तों पर ईमान। फरिश्तों पर ईमान हम सोचते हैं हाँ तो क्या हमारा फरिश्तों पर ईमान है, तो सही, फरिश्तों पर ईमान रखना भी जो है ना इंसान की वो जिंदगी पे बड़ा असर करता है। इसलिए कि जिसका फरिश्तों पर ईमान होता है ना, फिर वो ये मानता है कि मेरे साथ ये बैठे हुए हैं, मैं अकेला नहीं, इस वक्त जहां पे भी मैं और आप बैठे हैं हमारे साथ कोई और भी है, और वो अल्लाह के फरिश्ते हैं, और वो लिख रहे हैं, वो थकते भी नहीं, वो सोते भी नहीं, उनको कहीं कोई और हाजत भी नहीं, वो सब बस मेरे साथ ड्यूटी पे लगे हैं। ये बात चेंज करती है ना इंसान की जिंदगी को। फिर उसके बाद फरिश्तों पर ईमान क्या बताता है हमें कि मेरे साथ अगर कोई भी नहीं चलने वाला ना, सारी दुनिया में मेरी मुखालिफ हो गई, तो मेरे साथ कोई अल्लाह के फरिश्ते हैं जो मेरा साथ देने वाले हैं। वो इतनी प्यारी आयत है, मेरी फेवरेट आयतों में से, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू, वो लोग जो कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पे इस्तकामत इख्तियार करते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उनके पर फरिश्ते उतरते हैं, वो क्या कहते हैं, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, तुम ना डरना ना कोई गम करो, तुम क्यों डरते हो, क्यों काम करते हो, हम है ना तुम्हारे साथ, अबशिरू बिल जन्ना, सुनो यहाँ पे थोड़ी हमेशा रहना, तुम्हारे लिए अल्लाह ने खूबसूरत घर बनाया हुआ जन्नत में, उसकी बशारत सुनो। ये उनके साथी बनते हैं, ये उनको इनके साथ देने वाले होते हैं, ये इनके मददगार होते हैं नेकी के कामों में, ये फरिश्ते होते हैं जो वो इनके साथ, वो रिश्ता है ईमान वाले का कि देखें और रिश्ते कभी सो जाएंगे, कभी थक जाएंगे, कभी, लेकिन ये वो साथी हैं जो थकते नहीं, जो साथ साथ रहते हैं, ढारस बनाते हैं इंसान का दिल बड़ा करते हैं, वो डाउन होने लगता है ना, फिर वो एकदम दिल में एक तसल्ली सी आ जाती है, वो फरिश्ते अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है जो इंसान के दिल को ढारस बंधाते रहते हैं। और फिर ये वो फरिश्ते हैं जो कि इंसान के लिए इस्तेग़फार करते हैं, जो इंसान के लिए अल्लाह से माफिया मांगते हैं, अल्लाह इसको माफ कर देना, अल्लाह इसको माफ कर देना, सुभान अल्लाह, ये वो फरिश्ते हैं। फिर आप देखिए इन फरिश्तों के अंदर ऐसे भी फरिश्ते हैं जो बहुत बड़े उसके यानी बहुत बड़े लेवल के हैं, जैसे कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जैसे कि मीकाईल अलैहिस्सलाम, जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लाने वाले फरिश्ते, मीकाईल अलैहिस्सलाम उसके रिस के ऊपर मुतय्यन फरिश्ते, इनके साथ पूरी पूरी टीमें हैं, इसराफील अलैहिस्सलाम है जो सूर फूंकने वाले फरिश्ते हैं, अर्श के उठाने वाले फरिश्ते हैं, तो इतने बड़े हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके कान की लौ से लेके ये जो ईयर लोब है इससे लेके कंधों तक का फासला 700 साल तक कोई चलता रहे तो इतनी मसाफत है, 500 साल के फासले तो एक आसमान से दूसरे का, तो ये 700 साल इनके कान की लौ से लेके कंधे तक है सिर्फ, क्या बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना, एक आसमान दूसरे से कितना है हदीस में क्या आता है, 500 साल की मसाफत में, और ये 700 साल, सुभान अल्लाह। फिर हमें पता चलता है जन्नत का जो खाजिन फरिश्ता है रिदवान, फिर हम पता चलता है जहन्नुम का फरिश्ता है मालिक, यानी जो जो टॉप पे है उनमें भी हायरार्की होगी ना, उनके नीचे पूरी पूरी टीम है, फिर मुनकर नकीर का हमें पता चलता है जो कब्र में आएंगे, तो ये सब फरिश्ते हैं ना, इन पे हमारा ईमान है कि ये फरिश्ते हैं अल्लाह के। फिर मलकुल मौत है, वो भी आता है अपनी टीम के साथ, फिर रूह डालने वाले फरिश्ते हैं जो रहमे मादर में आते हैं, बारिश बरसाने वाले फरिश्ते हैं, और भी कितने ही कामों के ऊपर फरिश्ते मुतय्यन है, इन सब के ऊपर हमारा ईमान है, और ये ईमान है कि ये अल्लाह की बात को सुनते हैं, मानते हैं, जैसे अल्लाह ताला फरमाता है वैसे ही करते हैं, ये नहीं कि वो अपनी मर्जियां चलाते फिर रहे, इसलिए इनसे नहीं मांगते हम, क्योंकि वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, उनके ऊपर अल्लाह का हुक्म चलता है। वकुतुबिही और उसकी किताबों पर,
जितनी अल्लाह ताला ने किताबें सही पे उतारे किसी भी पैगंबर पे, जो उनकी ओरिजिनल फॉर्म थी, हम उसके ऊपर ईमान लाते हैं। आज वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म्स में है, उनको नहीं हम कहते कि ये अल्लाह की तरफ से, जो अल्लाह की तरफ से उतरी थी हम उसके ऊपर ईमान लाते हैं। और रसूल ही, और उसके रसूलों पर ईमान लाते हैं। और उसके रसूलों में कौन रसूल, आपको पता है 1,24,000 अंबिया आए और 25 का तो नाम कुरान में है। जब रसूल आए एक जगह तो उसमें नबी भी शामिल है रसूल भी शामिल है, जब मतलब एक ही जगह दोनों आ जाए तो फिर नबी अलग और रसूल अलग माना देता है, लेकिन जब रसूल आ गया तो उसमें नबी भी शामिल है। तो हमें पता चलता है कि 25 का सिर्फ नाम कुराने पाक में है, लेकिन इनके अलावा बहुत सारे और भी पैगंबर हैं जिनका जिक्र कुरान में नहीं आया, मगर हम उनको अल्लाह के पैगंबर मानते हैं। वो जहां पे भी आए, वो दुनिया के किसी खित्ते में भी आए, अल्लाह ताला ने उनको मबूस फरमाया, हम उनके ऊपर ईमान रखते हैं। ठीक है, आप ये देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हैं उनके अंदर इन तमाम रसूलों में, और सारे रसूलों के वारिस कौन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये मिशन कौन लेकर चलने वाला है, उम्मते मोहम्मद, ये उम्मते मुस्लिमा जो है ये रसूलों की वारिस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर फिक्र थी इस अमानत की कि आपने सहाबा से फरमाया हल बल्लग तू, क्या मैंने तुम्हें पहुंचा दिया, सहाबा ने फरमाया हाँ आपने हमें पहुंचा दिया, आप फरमाया अब तुमने आगे पहुंचाना है। तो क्या हम भी ये बात पूछ सकते हैं अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अपने खानदान वालों से, अपने शहर वालों से, हल बल्लग तू, क्या मैंने आपको पहुंचा दिया, पूछ सकते हैं, इतनी हिम्मत है पूछने की, या ये तो नहीं कि उनका आगे से जवाब होगा नहीं आपने तो हमें कुछ भी नहीं बताया। तो ये रसूलों पर ईमान। और आप ये देखें, अच्छा आगे बताती हूँ, ला नुफरिकु बैना अहदिन मिन रुसुली, इनमें से हम किसी में भी फर्क नहीं करते। फर्क करने का मतलब क्या, यानी एक को मानना और दूसरे को ना मानना, ये चीज नहीं हम करते, जैसे दूसरों ने की, जैसे यहूदियों ने ईसा अलैहि सलाम को नहीं माना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना, ईसाइयों ने नबी अलैहि सलाम को नहीं माना, बाकी उनको सबको मान लिया, तो इस किस्म की हम नहीं चीज करते। और उम्मत मुस्लिमा सिर्फ वाहिद उम्मत है जो सबको ही मानती, और सब हमारे नजदीक उतने ही काबिल इज्जत है जितनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबिल इज्जत है। हम ये नहीं कहते कि उनको तो हम कोई ठीक है मान लिया, लेकिन हम नहीं उनको कोई इज्जत देते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं। हाँ फजीलत अपनी जगह, अल्लाह ने वो फजीलत दी है वो अपनी जगह, मगर हम फर्क किसी में नहीं करते, हम फर्क करके ऐसे नहीं कहते कि किसी एक को हम बीच में से निकाल दें और छोड़ दें, ये नहीं हम करते। और आप देखें ये जो चीज है ना, ये सारी क्या है, ईमान बिलगैब है। आप देखें अल्लाह गैब में, हमने उसको माना, फरिश्तों को देखा आपने, नहीं देखा, लेकिन हमने उनको माना। फिर किताबें जो पिछली आई हैं उनको देखा आपने कि वो किताबें उतरी भी थी कोई के नहीं उतरी थी अल्लाह की तरफ से, नहीं, हमारे लिए तो वो भी गैब है ना। यदि इसी तरह रसूल जितने आए, क्या आप रसूलों से कोई मिले हैं, हमारे लिए तो वो भी गायब है, या किसी दुनिया के अंदर हुआ है, लोग इंसानों ने देखा होगा, लेकिन हमारे लिए तो गायब है। गैब पर ईमान ही जो है वो एक्सेप्टेबल है। देखो ये कुरान शुरू ही हुआ तो क्या अल्लाह ताला ने फरमाया, जो गैब पर ईमान लाते हैं, तो मोमिन की आपको पहली सिफत क्या पता चली, गैब पर ईमान। सूरह बकरा की शुरू की आयात देख ले, युमिनून बिलगैब, वो गैब पर ईमान लाते हैं। तो शुरू की आयात से ही आपको पहली सिफत पता चल गई, और यहाँ पे इख्तिताम में आके भी वही चीज को दोबारा बताया गया, गैब पर ईमान। अच्छा अब ये जो चीजें, अब हमने कितनी पढ़ी, ईमानियात, अल्लाह पर ईमान, मलाइका पर ईमान, किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, इससे आपको कोई बात याद आती, ईमान के अरकान, ईमान के अरकान कितने हैं, पांच हैं कि छह हैं, इस्लाम के पांच हैं, ईमान के कितने हैं, छह अरकान हैं। वो हमें कैसे पता चला कि हमने खुद ही बना लिए, नहीं, जिब्राईल अलैहि सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे इंसानी शक्ल में, और उन्होंने बताया था इस्लाम ये है और ईमान ये है।
तो उन्होंने छह चीजें बताई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिनमें से हमने यहाँ पे कितनी देखी, चार देखी। पांचवी क्या है? आखरत पर ईमान। और छठी क्या है? तकदीर पर ईमान। तो आखरत पर ईमान भी इसी आयत के एंड में आ गया है, वह इलैक अल मसीर, लौटना तेरी ही तरफ है। ये क्या है? आखरत पर ईमान। बाकी तो कहते हैं कि मार के मिट्टी हो जाना, तो ये आखरत पे ईमान भी इसमें आ गया। यानी जब हम रात को सोने लगते हैं तो हम सारा इकरार करके सोते हैं, अब मर भी जाएंगे तो इंशाल्लाह ये आयतें मेरे लिए काफी होंगी, क्योंकि मैं डिक्लेयर करके सोई कि मेरा अल्लाह पर ईमान है, मेरा फरिश्तों पर ईमान है, मेरा किताबों पर ईमान। मैंने एक तरह से रिवाइज किया अपने ईमान को, एक एतराफ किया अपने ईमान का सोने से पहले, तो ये काफी हो जाएगा ना इंसान के लिए। सुभान अल्लाह, अगर उसकी जान भी चली जाती है, निकल जाती है सोए सोए, तो उसके आखिर में क्या था? ईमान की तजदीद, डिक्लेरेशन ऑफ ईमान। और अच्छा, अब रह गया तकदीर पे ईमान। तो अल्लाह पर ईमान में ही तो तकदीर पे ईमान है, क्योंकि तकदीर क्या है? अल्लाह का इल्म, अल्लाह का इल्म है तकदीर। अल्लाह ताला को सब पता है कि क्या होना है आगे, तो तकदीर उसके हाथ में है। और अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह लहुल खल्क वल अम्र, अल्लाह के लिए जो जो भी तखलीक उसने किया, और उसी के लिए है जो भी उसका हुक्म, जो भी उसका फैसला, तो वो अल्लाह पे ईमान में आ गया। तो सब ईमानियात इस एक आयत में आ गए हमारे लिए, तो कितनी बड़ी बात है ना। फिर वकालू, अच्छा ये सारा बातें करके सुभान अल्लाह, मैं कुर्बान जाऊं उस रब के पर कि देखो उसने हमें खुद सिखाया कि ऐसे ऐसे तुम कहो, ऐसे ऐसे कहो, और ऐसे मुझसे मांगो, और ऐसे मुझसे कहना। वकालू, और उन्होंने कहा, समियाना व अताना, हमने सुन लिया, हमने मान लिया। किसने कहा ये जो ये कहने वाले ना, अल्लाह पे ईमान लाए हम, मलाइका पे हम, ये उन्होंने क्या कहा? हमने सुन लिया और हमने मान लिया। पहला स्टेप क्या? समेना। फर्स्ट स्टेप, अताना तो बाद में आता है, समेना पहले आता है। ये भी जो है पूरी लाइफ है, पूरी लाइफ, ये हैं टू वर्ड्स, यकीन जाने ये पूरी जिंदगी है, ये दो लफ्ज नहीं है, ये पूरी जिंदगी है। क्योंकि जब आपने कहा ना समयाना वाताना, हमने सुन लिया हमने मान लिया, तो क्या मान लिया? जो अल्लाह चाहेगा अब वही होगा, जो मेरा रब कहेगा कि यहां देख मैं वही देखूंगी, जो कहेगा ये सुन मैं वही सुनूंगी, जो कहेगा ये ऐसे ऐसे कमाई कर मैं वही करूंगी, जो कहेगा ये पहनो मैं वही पहनूंगी। आप उसमें दुआए कनूत में कहते हैं, वनत रुकमई या रुक, अल्लाह हमने छोड़ दिया उसको, जो भी तेरे नाफरमान है हमने उनको भी छोड़ दिया, यानी हम जुड़ेंगे भी उसके साथ जो तेरे फरमान बता है, हम छोड़ देंगे उनको जो तेरा नहीं बनता, मैंने उसको छोड़ दिया। अब देखिए हमें वो पता ही नहीं होता ना, हम दुआए कनूत में भी क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह। तो समयाना, पहली चीज समयाना, हमने सुन लिया। सुन लिया क्या? सुन लिया हमने अल्लाह की बात को, सुन लिया। तो जो लोग कहते हैं हमने सुनना ही नहीं, आज तो मुसलमान कहते हैं ना साफ ही, एक खातून ने मुझे साफ ही मुंह से कह दिया, दी देखेंगे हम इसलिए नहीं ये कुरान पढ़ते, क्योंकि अगर हमने सुन लिया तो फिर हमें अमल करना पड़ेगा, तो अमल तो हमने करना ही नहीं है। अल्लाह अकबर, जबकि सूरह मुल्क देखो, वो भी हर रात को पढ़नी होती है, उसमें क्या है? जहन्नमी लोग कहेंगे, वकालू लौ कुन्ना नस्मा व नाकिलु मा कुन्ना फी असहाबे सैर, काश हम सुन तो लेते, हम अकल करते, हम कुछ समझ करते, तो आज हम जहन्नुम वालों में ना होते। यानी सुनना इज द की, पहली चीज ही क्या है? सुन लो अल्लाह की बात को, सुनो। सुनना नहीं हम चाहते, सुनना नहीं चाहते ना हम, क्योंकि आजाद जिंदगी गुजारना चाहते हैं, और हम अल्लाह के हुक्मों की तामील ही नहीं करना चाहते, तो सुनेंगे क्यों? वो सुनेगा ना जो समझता है कि मैंने कुछ मानना है। तो ये यहां पे जो बात कही गई ना, सुन लिया और हमने इताअत की, ये किसका तरीका है? एक मोमिन का। ये वो कहता है हमने सुन लिया और मान लिया। और आप ये देखें यहाँ पे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो पिछली आयत उतरी थी ना कि तुम अपने दिल में रखो बात को या जाहिर करो, अल्लाह ताला तुम्हारा इस पे मुहासबा करेगा। तो साहबा बड़े परेशान हुए, उन्होंने कहा कि हम कैसे अल्लाह, ये हिसाब किताब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और घुटनों के बल बैठ गए, जैसे हम नील डाउन करते हैं इस तरह घुटनों के बल, यानी वो समझ नहीं कितना से गिर पड़े, क्योंकि उन जाहिर उन्होंने अमल करना था, तो उनको इतनी शाक गुजरी, ये उनके ऊपर भारी गुजरी ये आयत ना। हमारे जैसे हम तो अमल करना नहीं है तो सारा कुरान भी पढ़ लेते हैं, उनको तो ज्यादा फिक्र नहीं होती कि हमने कोई, क्योंकि अमल की तरफ इतना ध्यान नहीं होता हमारा। तो उन्होंने तो हर चीज को सीरियस लेना होता था ना। तो जब ये पता चला कि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है तुम उसको जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा, तो वो तो परेशान हो गए और वो आके ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गिर पड़े। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, हमें नमाज का हुक्म दिया गया, हमने समेना वाताना का, हमें समेना वाताना नहीं लेकिन हमने मान लिया, हमने नमाज पढ़ी, हमें रोजे का हुक्म दिया गया, हमने मान लिया, हमें जिहाद का हुक्म दिया गया, हमने मान लिया, हमें सदका का हुक्म दिया गया, हमने मान लिया। ये ऐसे अमल है जिनकी हम ताकत रखते थे, हमने मान लिए। अब तो जो आप पे आयत गुजरी है इस पे अमल करने की तो हम पे ताकत ही नहीं, यानी अब दिलों के ऊपर तो इंसान का इख्तियार नहीं ना होता, दिलों में कई बातें आ जाती हैं, अगर अल्लाह ने उनके ऊपर पकड़ लिया तो हमारा हाल क्या होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम इस तरह कहो जैसे तुमसे पहले लोगों ने कहा था? क्या कहा था? आपने पहले पारे में पढ़ा है ना, बनी इसराइल ने क्या कहा था? समेना व असईना, हमने सुना लेकिन हमने मानना नहीं है। तुम चाहते हो तुम भी ऐसे ही कहो, बल्कि तुम कहो हमने सुना, हमने इताअत की, और फिर ये आयत उतरी। इसका मतलब मल्टीपल टाइम्स उतरी होगी। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया ना, तो मुसलमानों ने फौरन कहा, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जैसे कि हमारी जुबानों से फिसल के निकला समयाना वाता, और उनकी गर्दनें झुक गई, और अल्लाह ताला ने फिर ये आयत निकाल उतार दी, अल्लाह ने फिर उनके लिए आसानी कर दी ना। क्योंकि हिसाब का माना क्या होता है, जो पिछली आयत में हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला हिसाब लेगा तुम्हारा, युहासिबकुम बिहिल्लाह। तो हिसाब के याद रखिए तीन माने होते हैं। एक माना हिसाब का क्या होता है कि जब आमालनामा सामने आए तो बस उसको गो थ्रू किया जाए उसमें से। जैसे ना आप किसी के सामने जब मसलन आप अकाउंटेंट के सामने अपने टैक्स के लिए पेपर्स लेकर जाते हैं, अभी आपने उसको हायर नहीं किया, बस वो गो थ्रू कर रहा है आपके पेपर्स को, या आप इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने खड़े होते हैं अपनी चीजें देते हैं, तो आप कहते हैं मैं तो बड़ी जल्दी फारिग हो गई, उसने तो बस देखा मेरे पेपर्स को, उसने दे दिया, कुछ भी नहीं कहा। तो अम्मा मन ऊतिया किताब हु बियमीनिही फसौफा युहासबु हिसाबन यसीरा, जिसके दाएं हाथ में एक किताब दी जाएगी उसका आसान हिसाब किया जाएगा। आयशा रजी अल्लाह तआला ने पूछा कि या रसूलल्लाह आसान हिसाब क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि पेशी तो सबकी होगी, ऐसा नहीं होगा कि किसी को अल्लाह के सामने पेश ही ना होना पड़े तो चलते चलते चले जाए, नहीं, पेशी तो सबकी होनी है। हाँ, मगर जिसका अमालनामा देख के अल्लाह ताला गए, अच्छा तुमने ये किया, अच्छा तुमने ये किया, अच्छा तुमने ये किया, अच्छा जाओ मैं तुम्हें माफ कर दी, ये है आसान हिसाब। लेकिन ये भी एक हिसाब है, ये भी हिसाब का एक माना है। नंबर टू, इससे अगला लेवल क्या हिसाब का, वो भी उसको भी हिसाब ही कहते हैं कुरान में, मुनाकशा, कि अल्लाह ताला सवाल जवाब करे कि ये तुमने किया क्यों किया, उस दिन तुमने ऐसा किया था ऐसा क्यों किया तुमने, और ये तुम कर सकती थी, तुम्हारी ताकत में थी, तुमने क्यों नहीं किया ये, जिससे ये पूछ लिया गया, बॉस हो गया। आप देखते हैं कभी कभी हम बच्चों के साथ ऐसे करते हैं, क्यों किया तुमने, क्यों किया ऐसे, तो वो आगे से रोने ही शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक तरह की सजा ही है ना, और अल्लाह ताला पूछे किसी से क्यों किया तुमने, उसके पास क्या जवाब होगा। और तीसरा है कि सजा दे देना उसके ऊपर, ये भी फिर एक हिसाब का किस्म। पहले हिसाब में तो क्या है, सिर्फ गो थ्रू करना, दूसरे हिसाब में सवाल जवाब, तीसरे हिसाब में सजा भी देना। तो ये सब भी हिसाब की ही किस्में हैं। तो अल्लाह जिसके लिए चाहे माफ कर दे, जिसके लिए, आप किसके लिए अल्लाह माफ करेगा कि मसलन है कि ऐसे एक रेंडमली कोई ख्याल आ जाता है, वो तो इंसान के बस में नहीं है कोई भी ऐसे दिमाग में आ गया, लेकिन जो उसको एंटरटेन करना है वो तो फिर इंसान के बस में है ना, कि आगे इसको इसको मैं और सोचूं, इसको फैंटेसाइज करूं, इसको ड्रीम करना शुरू कर दूं, फिर आगे से आगे सोचना शुरू कर दूं, तो वो तो इंसान के बस में है, वो नहीं, फिर अल्लाह ताला चाहेगा तो उसके ऊपर पकड़ कर ले।
तो मोमिन का क्या काम है? समेना व अताना करना, जैसे सहाबा ने किया। जितना भी कोई मुश्किल काम लग रहा हो उसके ऊपर मोमिन ये नहीं कहेगा कि ओ मैं नहीं कर सकती ये, अल्लाह का हुक्म आ जाए फौरन कहें समेना व अताना। क्योंकि देखें, अगर आपने ये कहा ना कि नहीं मैं नहीं कर सकती, तो आप किसको कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? अल्लाह ताला को, अल्लाह रब्बुल इज्जत को कह रहे हैं। और ये कितनी बड़ी बात है ये कह देना। ये कोई किसी, देखें किसी ऑथर की किताब हम नहीं पढ़ रहे कि हम या कोई टीवी में बैठ के तज्जिया कर रहा तो हम कहें ओ आई डोंट एग्री विद दिस, ये नहीं। ये अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह के हुक्म के आगे कोई इंसान कहे मैंने नहीं मानना, ये मैंने सुन तो लिया मानूंगी नहीं मैं, ये कौन कह सकता है? ये आप अपने किसी दोस्त को तो कह सकते होंगे, किसी जानने वाले को तो कह सकते होंगे, अल्लाह को ये इंसान कैसे ये बात कह सकता है अल्लाह ताला के सामने? तो मोमिन की फरमाबरदारी का कलिमा क्या होता है? वो कैसे अपनी फरमाबरदारी का इजहार करता है? समयाना व अताना कह के, ये होती है मोमिन की फरमाबरदारी। और अगर इंसान ये कहता है कि मैं नहीं कर सकता या मैं सोचूंगी करने का, एक ये भी होता है ना, एक होता है मैं नहीं कर सकता, हम कहते हैं नहीं मैं ये तो नहीं कहती मैं नहीं कर सकती, लेकिन मैं सोचूंगी, मैं मशवरा करूंगी, मैं किसी से सलाह ले लूंगी पहले, मैं देखते हैं अभी देखते हैं क्या करना है मुझे। तो ये भी मोमिन का शेवा नहीं है, इसलिए क्योंकि ये काम भी हम किसके साथ करते हैं? ये भी अपने अपने जैसों के साथ कर सकते हैं, अल्लाह के साथ जिसको हमने खुदा बनाया उसके साथ नहीं कर सकते। अगर आपने सोच सोच के ही काम करने हैं ना, उसके हुक्मों के ऊपर अमल करने हैं सोच के कि इसमें क्या फायदा है, इसमें मेरा कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, पहले मैं ये सोचूंगी, तो फिर तो वो खुदा ही ना हुआ जिसके लिए आपने पहले खुद सोचना है, फिर तो ये खुदा ना हुआ, वे तो ये कोई आपके जैसा इंसान हो गया जिसकी पहले आप बात को परखते हैं। देखिए ना, हर एक की बात को हम क्या ऐसे ही तो नहीं ले लेते, क्या करते हैं जब हम किसी की बात सुनते हैं तो फिर उसको परखते हैं, फिर सोचते हैं, फिर दिल कायल होता है, फिर उसकी बात को मानते हैं, कन्विंस होते हैं तो मानते हैं। अल्लाह के साथ ऐसा मामला नहीं हो सकता। अल्लाह के साथ क्या है? समयाना वादाना, उसमें कोई वक्फा नहीं है, हमने सुना और हमने मान लिया बस, कोई बीच में सोचने समझने कन्विंस होने इसकी बात ही नहीं, इसका सवाल ही नहीं है। क्योंकि ये कब था, ये सोचना और समझना कब होता है पता है आपको? ये उस वक्त आपके पास चॉइस है जिस वक्त आप अल्लाह पर ईमान नहीं लाए, तब सोचें जितना मर्जी सोचें कि ईमान लाना है कि नहीं लाना। आप किसी काफिर को नहीं कह सकते कि तुम बस मुसलमान हो जाओ, उसका दिल ठुकेगा, दिल में बात जमेगी, तब वो ईमान लाता है। तो आप किसी को जबरदस्ती नहीं कह सकते, ठीक है ना? ये बात सही है ना? इसी तरह आप, आपको कोई जबरदस्ती नहीं, आप अल्लाह पर ईमान लाना चाहते हैं लाएं, नहीं चाहते तो नहीं लाएं। इम्मा शाकिर हुआ इम्मा कफूरा, अल्लाह ताला फरमाते हैं जो चाहे तो शुक्र गुजार हो, जो चाहे तो ना शुक्रा हो जाए। अल्लाह ने चॉइस दी है, वहां तक तो आपकी मर्जी चल सकती है, वहां तक तो ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, भाई आपने सोच लिया, आपने समझ लिया, आप कन्विंस हो गए, अब आप वंस ईमान ले आए हैं ना, उसके बाद अब आपने चॉइस नहीं, आपके पास चॉइस नहीं है कि अब आप कहें मैं सोचूंगी कि मैंने मानना भी है या नहीं इसके हुक्मों को। जब आपने अल्लाह को मान लिया तो उसके अंदर ये शामिल है कि मैं उसका वो हर हुक्म मान लूं, वरना अल्लाह को मानना क्या हुआ फिर? बस वो है, हाँ वो बहुत बड़ा है, वो अकेला है, वो ये है, वो उसके अलावा नहीं, मेरी जिंदगी में नहीं उसकी कोई था, मेरे ऊपर नहीं है कोई लाजिम है, ये कौन सा ईमान हुआ मुझे ये बताएं? हम समझे ही नहीं ना ईमान को, सीधे तो कह रहे हो हमें पता ही नहीं ईमान है क्या। ईमान नाम इताअत का भी है, तीन चीजें ना आपको बताई है ना मैंने, इताअत ही नहीं करनी तो कौन सा ईमान है आपके पास? आप दिल से भी मान लिया अल्लाह बहुत बड़ा है, ओ भाई अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, और ऐसे
जुबान से भी कह रहे हैं, उसके बाद अमल में क्या आ गया? ये तो वही हो गया जो मैं आपको बता रही हूँ, वो उसको बताया रास्ता कौन सा सीधा है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल आपने ठीक बताया। उसके बाद चलने लगे तो उल्टे रास्ते पे जा रहे। मैं नहीं मानती उसके रास्ते को जो उसने बताया। हाँ मैंने कह दिया था उसके सामने, ऐसे करते हैं ना हम बाज दफा, क्योंकि हम कायल नहीं होते, हम कन्विंस्ड ही नहीं होते किसने हमें सही रास्ता बताया। तो इसका मतलब हम कन्विंस्ड नहीं है कि अल्लाह वाकई वो खुदा है, वो खुदा है इबादत के लायक, वही इबादत के अंदर इताअत आती है। हम कहते हैं हम अल्लाह की इबादत करते हैं, इताअत मैंने नहीं करनी। ओ भाई आपके पास चॉइस ही नहीं है, आपने राइट ऑफ चॉइस गिव अप कर दिया जब आपने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। आपका अब राइट नहीं है ये, तो मुसलमानों को बात समझ ही नहीं आती। वो सोचते हैं कलमा भी हमने पढ़ लिया लेकिन आगे मेरी मर्जी है, मैं नमाज पढ़ू ना पढ़ू, मैं रोजा रखू ना रखू, मैं जकात दू ना दू, मैं हज उमरे पे जाऊं ना, मुझे जो मुझे लगेगा कि मेरे लिए ये सही है वही मैं करूंगी, मैं हिजाब लू ना लू, मैं सूद से बचू ना बचू, मैं ये काम कर जो सारे कुरान में कहे जा रहे हैं मैं करूं ना करूं, ये तो हमारी अपनी चॉइस है ना भाई, हमारी जिंदगी है। वो कहे किसने आपको कह दिया? आपने जिस दिन कलमा पढ़ा ना उस दिन आपने अपना ये राइट ऑफ चॉइस दे दिया, आई गिव अप माई राइट ऑफ चॉइस। अब मेरे ऊपर जो हुक्म चलेगा वो अल्लाह का चलेगा, क्योंकि मैं अल्लाह पे ईमान ले आई हूं, ये ईमान में इंक्लूडेड था। ये ऐसे ही है कि आप एक मुल्क का वीजा लेते हैं, आप उसके बाद आगे कहते हैं हाँ मैंने वीजा तो ले लिया, मैं इस मुल्क को भी मानती हूँ लेकिन मैं इसका कानून नहीं मानूंगी। वो कहेंगे आप इस मुल्क में एंटर हो गए तो आपने ये इसी बात के ऊपर आपको वीजा दिया गया कि आप यहाँ का कानून मानेंगे, ये कैसे हो सकता है आप अंदर एंटर भी हो जाए, आप कहें मैं मानूंगी नहीं कानून। आप जब ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते हैं, आपके जब वो आपको लाइसेंस देते हैं तो आप एक तरह से एग्री करते हैं कि मैं सब ट्रैफिक के रूल्स को मानूंगी। अब आप कहें कि मैंने लाइसेंस तो ले लिया लेकिन अब मैंने कब कहा था कि मैंने मानने हैं ट्रैफिक के रूल्स, ये नहीं होता। आप इसी तरह जब मुसलमान हो गए ना, जब आपने कलमा पढ़ लिया, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि अब मैं सोचूंगी कि मैंने अमल करना है। वो सोचना पहले था, सोचना पहले था कि आप एक अल्लाह पर ईमान लाते हैं या नहीं, उसके ऊपर आपने सोचना था। जब वंस आप ईमान ले आए तो आपको पता ही नहीं आपने क्या बात फिर माननी है। आपने ये सब मान लिया कि अब मेरी मर्जी नहीं, अब अल्लाह की मर्जी। समझ आई बात? तो कालू समयाना व अताना बहुत बड़ी चीज है। अब आप सोच लेना कि अब आप क्या कह रहे हैं, समयाना हमने सुन लिया, हमने मान लिया, हमने मान लिया, अब आगे अल्लाह जैसे जैसे अल्लाह बताता जाएगा हम सुनते जाएंगे मानते जाएंगे। मेरा दिल कायल हो ना हो आई डोंट केयर, मेरी समझ में आए या ना आए आई डोंट केयर, मुझे चाहे नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है आई डोंट केयर, ठीक है ना। ये होता है फिर ईमान। अब ये नहीं कि मैं इंतजार करने लगूं कि जी मेरा दिल अभी नहीं मान रहा, हाँ जिंदगी में कभी मान जाएगा तो फिर मैं चलूंगी इस पर। वो तो पता नहीं कभी मानेगा भी या नहीं मानेगा, उसके मानने की नहीं आपने वेट करना। आपने कहना ये मैं कर लूं, दिल मानना तो माना, नहीं मानना तो ना मान, मैंने तो अल्लाह की माननी है बस। अब ये देख लेना, छोटी सी एग्जाम्पल है देखें। अब आप ये कोरोना वायरस आया, सबने नकाब ले लिए। हम ये नहीं मैं कह रही कि नकाब की इस बहस में नहीं हम जा रहे कि नकाब फर्ज है कि नहीं है, फर्ज या क्या है, लेकिन लिए ना सब। अब चाहे पहले अगर किसी को कहा जाता तो अच्छा गर्मी बहुत है, हस्बैंड नहीं मानते, फलां हो जाता है फलां हो, लेकिन अब सब ने लिए ना। इसी तरह कल को वो ये कह दे कि भाई ये कोरोना वायरस जो है ये बालों के थ्रू, स्किन के थ्रू जल्दी पेनेट्रेट करता है, ये अंदर चला जाता है, तो अब आज जिसके बाल खुले होंगे उसके अंदर जाके ये बैठ जाएगा और फिर ये अंदर चला जाएगा। देख लेना कल को कोई नंगे सर होगा। आप वो कह देना कि देखें ये जो है ना, जब आप लेयर्स में कपड़े पहनेंगे ना तो फिर ये आपके जिस्म से नहीं जाके कर सकता, तो लेयर्स में कपड़े पहने, हर एक देखना अबाया पहन लेगा, लेकिन तब वो अल्लाह की फरमा बरदारी नहीं होगी, तब वो क्या होगा, उस पर कोई अजर नहीं होगा, वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए बस। लेकिन देखें फिर यहीं से हमें हमारे ईमान का पता चल जाता है कि जब अल्लाह कोई हुक्म देता है तो फिर हमें गर्मी बहुत लगती है, फिर हमें दूसरों के ख्याल बहुत आते हैं, फिर हमें ये बहुत लगता है मैं कैसी लगूंगी। अब तो नहीं किसी को लग रहा मैं कैसी लग रही हूं, आए मैं कितनी बुरी लग रही होंगी, आए क्या मेरे मुंह के ऊपर ऐसा चीज चढ़ा ली है, तब किसी को नहीं ख्याल आ रहा। तो बात वो ये ईमान की ना कि जब रब कोई बात हुक्म दे दे तो उसको कितनी तेजी करते हो मानने में,
या सोचों में पड़ जाते हो। हाँ, अपनी जान का खतरा आता है तो फिर कितनी तेजी से अमल करते, फिर तो नहीं किसी से मशवरे मांगते, फिर तो नहीं कोई लॉजिक तलाश करते, बस उन्होंने कह दिया तो हमने मान लिया। आप में से कितनों ने जाके देखा कि भाई ये इससे मास्क से कोई फायदा होगा? नहीं देखा ना, बस उन्होंने साइंटिस्ट में बता दिया, रिसर्च कर दे, हमने मान लिया, हमने फटाफट समेना वाताना कहा, समेना वाताना हर एक ने कहा। लेकिन अल्लाह कोई बात कहता है उसके ऊपर कितनी तेजी से समेना वाताना करते हो बताओ। उन्होंने कहा हाथ धो, भाई हाथ धड़ाधड़ धुल रहे हैं लोगों के, वो सैनिटाइजर खत्म हो गए दुकानों से, सैनिटाइज हो रहे हैं। ये किसने बताया? इंसानों ने ही बताया था ना। कितने कायल हैं हम इंसानों की बताई हुई चीजों पे, और अल्लाह हुक्म दे दे कुरान के अंदर, और बार बार कही या यो लदीना आमनू, या यो लदी, ए ईमान वालों ये करो, ए हम टस से मस नहीं होते, क्योंकि उस वक्त हमें लोगों के मशवरे चाहिए, उस वक्त लोगों की पहले चाहिए कि वो अपना सर हिलाते हैं हमारी इस पे, हाँ करते हैं, हमें इजाजत देते हैं तो हम करेंगे, सबका अप्रूवल चाहिए उसके अंदर। अभी आपने कितनों से अप्रूवल लिए ये सब करने से पहले? हालांकि इनकी तो थेरीज रोज चेंज होती है, आज कुछ है तो कल कुछ और है। कैसे मगर हम समय ना ताना करते, काश इससे ज्यादा हम अल्लाह के हुक्मों पे समय ना ताना करने वाले होते। लेकिन मोमिन का तो शेवा ही है, मोमिन का तो कलमा ही है, समय ना वाताना, और हम देखें कहाँ खड़े में, कितनी दूर है इससे, समय ना और उसके बाद बहुत बड़ा पॉज, पता नहीं जिंदगी ना गुजर जाए इसके अंदर अता ना करते करते, कि हम वहां तक पहुंचे कि अता ना करें। बड़ी सोचें आती हैं, बड़ी चीजें देखनी पड़ती हैं, आखिर हमें सोसाइटी में रहना है, आखिर लोगों में रहना है हमें, कितनी बातें हमें आती हैं ना। क्या यही चीजें अगर हमारे खिलाफ हुज्जत बन गई कयामत के दिन, तो क्या कहेंगे हम अल्लाह को? हाँ, जब ये इंसान बताते थे चीजें तो हम कितनी तेजी से मानते थे, हम कितने तेज दौड़ते थे उनको करने के, और अल्लाह तेरे हुक्म आए तो हम सोचों में पड़ गए। अल्लाह अकबर, क्या हमें अपने ईमान का पता नहीं चलता यहाँ पे कि कितना लेवल है हमारे ईमान का? अल्लाह कहे नमाज पढ़ो, हाँ हमसे तो नहीं उठा जाता, बड़ा मुश्किल होता है सुबह सवेरे उठना, वही वैसी जॉब मिल जाए कोई कि वो कहें सुबह 3 बजे आपने रिपोर्ट करना है, 4 बजे आपने आना है यहाँ पे पहुंचना है, तो कैसे नहीं हम गाड़ियां भगाते हुए चल पड़ेंगे। अल्लाह अकबर, ये तो एक छोटी सी एग्जाम्पल है, अगर इसी से सारी जिंदगी में देख लें कि मेरी समा व इताअत कितनी है, और मैं कितनी बातों में लॉजिक्स तलाश करती हूँ, क्वेश्चनिंग करती हूँ, और अमल करना इसलिए कि मुझे दिल नहीं चाहता अमल करने का, इसलिए बार बार सवाल ही पूछती रहती। आर्मी वगैरह में देखें आप, और जगहों पे दफातर में देखें, वो एक उनको ऑर्डर मिलता है और कोई सिपाही ये नहीं पूछता मुझे बताएं पहले इसके अंदर क्या है, हमारा फायदा क्या है, नहीं इस तरह हम क्यों लाइनें बनाएं, नहीं आप पहले, ऐसे कोई करता है? सब मानते हैं, सब समय ना वाता ना करते, किसी जॉब पे चले जाए सब अपने बॉस की मान रहे होते, किसी की जरूरत नहीं होती कि बॉस के खिलाफ कोई बात करे, नहीं भी अपनी मर्जी होती तो कहते हैं आप क्या करें, नौकरी तो करनी है ना। लेकिन हाँ, अल्लाह ही की साथ ऐसी रह गई है, या हम कहें समय है ना वो आसाई ना, हमने सुन लिया है, हम इतने ढीठ हैं, हमने मानना नहीं है, कितने कुरान के हुक्म हमें पता है ऑलरेडी लेकिन हम नहीं मान रहे, कितने लोग हैं जो कितनी दफा हम कुरान से गुजर चुके हैं लेकिन हम नहीं मान रहे। अल्लाह हम सबको माफ कर दे इसके ऊपर, गुफरानक गुफरानक गुफरानक, हम सबको अपना मुहासबा करना है इसमें कि मेरा कलमा समय ना वाताना है या मेरा कलमा समय ना वासीना है। और जो पहली दफा कुरान पढ़ रहे हैं, आगे बहुत सारे हुक्म आएंगे, हो सकता है आपको पसंद ना आए, हो सकता है वो आपके दिल को ना लगे, हो सकता है वो आपको बड़े मुश्किल लगे, ये कैसे कर सकते हैं, ये कैसे होगा, तो उस वक्त जितना मर्जी दिल में ये आ रहा हो फौरन कहें समय ना आता, हमने सुन लिया, हमने बस मान लिया, वो अल्लाह हमारे लिए आसानी करेगा, कैसे होगा ये कैसे नहीं होगा बस वो अल्लाह ने कराना है, वो अल्लाह ने तौफीक देनी, मेरा काम ये है कि मैं बस सबमिट कर दूं, मैं बस कहूं अल्लाह मैंने सुन लिया मैंने मान लिया। कुफरानक, फिर वो कहते हैं अल्लाह तेरी बख्शिश, अल्लाह तेरी बख्शिश, क्योंकि क्यों इसलिए कहते हैं अल्लाह हमने कह तो दिया, हमने सुन लिया और हमने मान लिया, अल्लाह हमने कह तो दिया, लेकिन अल्लाह जब हम मानेंगे भी तब भी बड़ी गलतियां होनी है, बड़ी जगह इंसान फिसलता है। ऐसे थोड़ी है पता है कि समय ना बताना कहने के बाद उसके बाद उससे कोई गलती ना हो, कोई गुनाह ही ना हो, ये नहीं हो सकता ना। सारे बनी आदम खताऊन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब खताकार है, और बेहतरीन खताकार कौन है? देखें बेहतरीन खताकार गुस्तार भी कभी बेहतरीन हो सकता है? हम तो सोचते हैं ना नहीं, जिसने गलत किया वो गलत ही है, नहीं, फरमाया बेस्ट खताकार पता है कौन सा? जो तौबा करता है, तौबा उसको बेस्ट बना देती है, वरना सारे बनी आदम खताकार हैं, सब बनी आदम, इसमें चाहे कोई औलिया अल्लाह है, चाहे बड़े कोई नेक लोग हैं, चाहे आपको जिनको भी आप बहुत समझते हैं कि ये बहुत नेक होंगे, सब खताकार हैं। तो इंसान फिर अल्लाह से क्या कहता है, अल्लाह तेरी बख्शिश, ऐ हमारे रब तेरी बख्शिश कि हमसे गलतियां फिर भी होनी है, उनको माफ कर देना। ये नहीं कि कोई तकब्बर है, हमने बस कह दिया, हम बस सुनेंगे और मानेंगे, तो नहीं, हम फिर भी गिर पड़ेंगे, अल्लाह हम जितना मर्जी कहें हम फिर भी गिर पड़ेंगे, अल्लाह तूने ही हमें चलाना है, तूने ही हमें थामना है, तूने हमें हमें लेके चलना है। तो ये चीज के गुफरानक, ये कलमा इससे पहले क्या होना चाहिए था, नसअलु का गुफरानक है ना, कि हम अल्लाह तुझसे सवाल करते हैं, देखिए गुफरानक बख्शिश तेरी, ये क्या चीज, बख्शिश तेरी, ये तो कोई पूरा सेंटेंस नहीं बनता ना, गुफरानक ये होना क्या चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलु का, या फिर सिर्फ नसअलु का गुफरानक रब्बन, लेकिन क्या आया, सिर्फ गुफरानक। ऐसे नहीं लग रहा कि जैसे कोई डेस्परेशन में कह रहा हो, जैसे कोई, आप देखें जब किसी को हेल्प चाहिए होती है तो वो क्या कहता है, मेरी मदद करो, ये नहीं कहता, जब कोई बहुत डेस्परेट होता है तो वो क्या कहता है, हेल्प हेल्प हेल्प, ऐसे कहता है ना, गुफरानक ऐसे ही है कलमा, बख्शिश तेरी बख्शिश तेरी बख्शिश तेरी, क्योंकि हमने गिर पड़ना है अल्लाह, तूने ही हमें थामी, हमसे गलतियां होनी है अल्लाह। लेकिन जब इंसान नेकी के रास्ते का इरादा भी कर लेता है, चल भी पड़ता है, लेकिन कितनी दफा गिरता है, क्या गिरता नहीं है, या उसे को गलतियों से पाक थोड़ी हो जाता है कि भाई मैंने इताअत करनी है तो मैं बस फिर बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊँ, ऐसे नहीं हो सकता। तो गुफरानक कब होता है, कब इंसान कहता है, जब वो समझता है कि मैं गलत हूं, मुझसे गलतियां होंगी और मैं गलतियां करता हूं, और जो माने ही ना, जो माने ही ना कभी गलती, वो कहां से कहेगा गुफरानक। लेकिन ये देखें अल्लाह ने इन मोमिनों की क्या सिफत बताई है, वो समीना वताना करते हैं और गुफरानक कहते हैं, वो अल्लाह से तौबा करते ही रहते हैं रब्बाना, और डेस्परेटली करते हैं, अल्लाह तेरी बख्शे, ऐ हमारे रब तेरी बख्शे, अल्लाह हू अकबर, जैसे कोई प्यासा कह रहा हो पानी पानी पानी, तो आपको उसकी शिद्दत महसूस होगी ना कि इसको कितना पानी चाहिए, हेल्प हेल्प हेल्प, ऐसे है ये गुफरानक, कि डूबता हुआ कह रहा है कि मुझे मुझे थाम ले मेरे रब, मेरे गुनाह हैं और तूने ना मुझे बख्शा तो मेरे, मैं तो डूब जाऊंगा, तो ये वो हेल्प की कॉल है गुफरानक, अल्लाह अकबर। तो जब इंसान तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी मगफिरत करता है, ऐसे नहीं है कि तौबा हो ही ना इंसान की तरफ से अल्लाह माफ करता है, ये नहीं, इंसान तौबा करता है। वह इलैकल मसीर, ए रब पलटना तेरी तरफ ही है, अल्लाह लौटना तेरी तरफ ही है, यानी इंसान ये मान रहा है कि अल्लाह इलैक का मैंने आपको बताया ना कि पहले आ गया, तेरी ही तरफ, यानी कहीं और नहीं है, मुझे भागने की जगह नहीं है, कहीं पनाह की जगह नहीं है, बस जो मेरी जिंदगी गुजर गई है ना वो क्या है, उसमें हर कदम तेरी तरफ ही बढ़ रहा है, मुझे लौटना तेरी तरफ ही है। आप देखें इंसान के जितनी ये सांसें चल रही हैं, आप देखें हम इस वक्त बैठे हुए तकरीबन ऑलमोस्ट 2 घंटे होने लगे हमें बैठे हुए, 2 घंटे पहले हम जिंदगी से 2 घंटा करीब थे और मौत से 2 घंटा दूर थे, और अब हम मौत से 2 घंटा और करीब हो गए, बात पता है आपको, ये जो यकीन है ना कि मुझे लौटना है, मुझे लौटना है, ये फिर इंसान को सीधा रखता है। इतना बेसमत ना चल लौट के जाना, फिर इंसान कहता है खुशी है या गम है, किसी ने अच्छा किया या बुरा किया, मैंने किसी से कुछ लेना है या देना है, बस हर वक्त ये ख्याल साथ है लगा हुआ कि मुझे लौटना। फिर अगर कोई बुरा करता है तो वो इसका पाएगा, मैंने नहीं बुरा करना, मुझे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी क्योंकि मुझे लौटना है। कोई अच्छा करता है तो उसकी जजा पाएगा, और मुझे अच्छा करना है इसलिए कि मुझे इसका सिला मिल जाना है, मुझे लौटना है, मुझे लौट के जाना है। ये यकीन फिर इंसान को पुश करता है कि वो तैयारी करे इसकी। जैसे किसी को पता हो कि मुझे मूव करना है कहीं, तो वो उसकी तैयारी करता है ना, पहले से चीजें उस तरह से सेल करने लगता है या अपना सामान हल्का करने लगता है, कहते हैं हमने मूव हो जाना है कुछ ऐसे में, तो तैयारी हुई ना। और जिसको ये यकीन ही ना हो कि मुझे लौटना है, इन्फॉर्मेशन तो सबको है, कोई कहेगा मुझे आप क्या नई बात बता रहे हैं, हमें भी तो पता ही है, इन्फॉर्मेशन सबको है, यकीन सबको नहीं होता, क्योंकि यकीन के साथ जिंदगी बदलती है, और जब यकीन ना हो तो फिर इंसान बेपरवाह रहता है। जब यकीन होता है ना फिर इंसान माफिया मांगता है, क्यों? इसलिए कि उसको पता है मुझे लौटना है, मुझे जाना है। फिर दुआएं निकलती हैं, अल्लाह अपने रास्ते में लगा लेना, अल्लाह मुझे उन लोगों के साथ मिला देना जो नेकी पे चलने वाले, अल्लाह मुझसे कबूल कर लेना, अल्लाह मुझे मुझे तू ही थाम के लेके चलना, क्योंकि लौटने का यकीन है। फिर इंसान रातों को भी सोचता है अल्लाह के सामने खड़े होना है, कैसे खड़े होंगे, मेरा क्या बनेगा, क्योंकि यकीन है ना लौटने का। तो इलैकल मसीर, ये भी इंसान को की जिंदगी को बदल के रख देता है। जब इंसान हर रात वो दुआ पढ़ता है, ला मलजा वाला मंजा मिनका इल्ला इलैक, वो दुआ का एक हिस्सा है, कोई पनाह नहीं, कोई भागने की जगह नहीं, कोई निजात ही नहीं, कुछ सिवाय तेरे किधर जाना है अल्लाह, तेरी तरफ ही तो आना है। या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुला, ये इंसान तू जा किधर रहा है, तू जो चल रहा है ना कशां कशां अपने रब की तरफ जा रहा है, तो उससे मुलाकात करने वाला, यही बात इंसान को भूल जाती है। तो मोमिन जो है वो कहता क्या है, समीना वाताना गुफराना का रब्बाना वइलैकल मसीर, वो अपने आप को याद दिलाता रहता है कि मुझे जाना है, मुझे लौटना है, मुझे अल्लाह की तरफ जाना है, और सिर्फ उसकी तरफ ही जाना है, कहीं और नहीं जा सकता। कितना भागोगे, भाग लो, ऐन अल मफर, भागने की जगह कहाँ, इंसान उस दिन कहेगा ऐन अल मफर, किधर है फरार होने की जगह, किधर है भागने की जगह, कि मैं वहां भाग जाऊं, भागने की जगह कोई नहीं होगी, इलैकल मसीर, जाना है उसकी तरफ, लौटना है, लौटना है, लौटना है। और पूरी दुनिया क्या सबक देती है, रहना है, रहना है, रहना है, इतनी चकाचौंध है इसके अंदर, इतनी अट्रैक्शन है, बस यहीं को याद रखो, उसको भूल जाओ, यहीं रहना है, ये यहाँ का सबक है। और अल्लाह क्या सबक देता है पूरे कुरान में, इलैकल मसीर, लौट के जाना है। तो फिर कैसे कोई बेसमत चल सकता है, जिसको ये शऊर आ जाए, जिसको ये यकीन आ जाए, लौटना क्या जिंदगी बदलेगी नहीं उसकी, कैसे हो सकता है वो बेढब चलता रहे। फिर तो दो चीजें हमने यहां पे देखी जो मोमिन की सिफात है, नंबर 1 गैब पर ईमान, नंबर 2 समयाना वाताना कहना, गैब ही है ना ये भी, इलेकल मसीर भी क्या है, गैब है, किसी को देख के आया आखरत को, क्यामत आएगी क्या होगा वहां पे, जन्नत जहन्नुम देख के आया, पुल सिरात देख के आया, मीजान देख के आया, नहीं, ये होता है मोमिन जो यहाँ पे इसका यकीन कर ले, तो मुझे खड़े होना है, और सारी ये जो जन्नत है जहन्नुम है पुल सिरात है मीजान, ये सब गैब की बातें। तो मोमिन का गैब पर ईमान और समय ना वाताना कहना, ये उसकी दो क्वालिटीज हैं, इनके अंदर अपने आप को झांक के देखें,
ये दो मेरे अंदर कैसी हैं, और फिर तीसरी ये कि अल्लाह से बख्शिश मांगते रहना, जस्टिफिकेशंस नहीं देना, अपनी बातों की तावीलें नहीं देना, गलत काम पे इसरार नहीं करना कि करते ही चले जाएं ढीठों की तरह, नहीं, वो फरानक हो फरानक।